ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आप सबको ये कृष्ण रसायनम के सत्र में स्वागत करते हैं। पिछले दो तीन सत्रों में हम लोग चर्चा करते आए हैं भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका की ओर चल प्रस्थान होने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इस तैयारी में बहुत कुछ हुआ है बीच में। उनकी बहन सुभद्रा दुखित अवस्था में थी क्योंकि उनका बेटा अभिमन्यु युद्ध में उनका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया था। इसलिए उनके शोकामग्न चेहरे को देखकर भगवान तीन चार दिन और ठहरे। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज आ पहुँचे, जाते समय बहुत दूर तक साथ में आने लगे, वो 2-3 किलोमीटर ऐसे तो रहा। महाराज भगवान बोलते रहे उनको, लौट जाओ, लेकिन वो तैयार नहीं थे। तो उनको रोते हुए देखकर, क्योंकि युद्ध होने के बाद वो शोकामग्न थे युधिष्ठिर महाराज, हाँ, उनको भीष्म पितामह से उनका उपदेश होना था, भगवान वापस लौट आ गए उस समय। इस तरह कुंती महारानी रथ के सामने खड़े होकर वो प्रार्थना किया भगवान की ओर, तो उस समय भी भगवान रहकर सुने उनकी प्रार्थनाओं को। अनेक कौरवेंद्र पुरस्त्री नाम, उनके बारे में भी हमने सुना कि वो छाती के ऊपर चढ़कर फूल की वर्षा किया उन्होंने, और आपस में बातचीत किया भगवान के गुणादिशियों के संबंध में। और हम लोग इसके बारे में भी हमने चर्चा की है कि वैदिक संस्कृति में स्त्रियों की कितना आदर दिया जाता था उस जमाने में, और स्त्रियों का संस्कृति क्या था, उसके बारे में हमने चर्चा की। और पिछले क्लास में खास करके एक विषय के ऊपर हमने चर्चा कर छोड़ा था क्लास को। वो विषय था कैसे भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी की, लेकिन उनका संबंध क्या था उन रानियों के साथ। साधारण पुरुष स्त्री जैसे संबंध नहीं था। ये बात के बारे में यही बात इस अध्याय के लास्ट में समझाया जा रहा है कि भगवान ने इस तरह इधर 9 कारण देते हैं प्रभुपाद जी कैसे भगवान का संबंध ज्योता रानियों के साथ ये इस दुनिया के साधारण भौतिक संबंध के बराबर नहीं है, ये समझाने के लिए। हाँ, सर्वप्रथम प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान अपने आप में पूर्ण हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का आकांक्षाएं नहीं हैं। भगवान फिर भी किसी के स्वामी बनते हैं, किसी के मित्र बनते हैं, किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के पति बनते हैं, सिर्फ अपने भक्त के हृदय में एक तीव्र प्रेम को जागृत करने के लिए। क्योंकि अलग अलग जीव भगवान से अलग अलग तरह का संबंध जोड़ना चाहते हैं। कोई जीव बोलता है भगवान को, हे भगवान आप मेरे पुत्र बन जाओ, तो भगवान देवकी वसुदेव के पुत्र बन जाते हैं। कोई जीव बोलता है भगवान को, हे भगवान आप मेरा मित्र बनो, तो सुदामा के भगवान मित्र बन जाते हैं, श्री रामा सुदामा मधुमंगला ऐसे। कोई कोई जीव बोलता है भगवान को, आप हमारा प्रेमिका बनो, मैं प्रेयसी बनूंगा आप प्रेमिका बनो, तो भगवान उनके प्रेमिका बनते हैं। कोई कोई चाहते हैं कि हे भगवान हम आपकी पटरानी बन जाए, महिषी रानी बन जाए। वो दरवाजे को खोल कर रखना, दे आर क्लोजिंग डोर, सो पीपल डोंट नो वेदर दे आर अलाउड आर नॉट। इज देयर रिस्ट्रिक्शन फॉर द प्रोग्राम, एनी कूपन इज देयर? तो उनको क्यों बंद करते हैं, उसको पूरा खोल देना, उसको जिनको आना है सबको फ्री है, मुफ्त में है प्रोग्राम, कोई चार्ज नहीं है प्रोग्राम के लिए। देखो अभी बंद कर दिया उसको, ओपन द डोर ओपन फुल्ली ओपन इट चैतन्य महाप्रभु ने अपने संस्था खोला है सबके लिए खोल दीजिए पूरा खोल दीजिए पूरा हो यस तो ये पहला बोल रहे हैं कि देखिए भगवान हमारे माता हैं हमारे पिता हैं हमारे बंधु हैं हमारे ज्ञान है हमारे मित्र हैं हमारे सब कुछ हैं भगवान इसलिए भगवान हरेक जीव के इच्छा अनुसार उनके साथ उसके अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं एक समय की बात है कि दंडकारण्य जंगल में भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के साथ सीता के साथ कुछ समय के लिए रहे उस समय अनेक ऋषि मुनि आकर देखते थे कि सीता माता कैसे सेवा कर रही है भगवान रामचंद्र की तो कानपुर मंदिर में हम गए थे अभी कुछ दिनों के पहले उनके मंदिर में एक फ़ोटो लगाया है सीता परोस रही है प्रसाद भगवान रामचंद्र को बहुत सुंदर फोटो है उधर तो इस तरह उसको देखकर ये दंडकारण्य ऋषियों को इच्छा हुआ कि जिस तरह सीता माता सेवा कर रही है भगवान की इस तरह हमको भी सेवा करने की इच्छा है भगवान की एक धर्म पत्नी बनकर लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने तो एक पत्नी व्रत लिया था और साथ साथ ये ऋषि मुनि तो पुरुष भी थे वो कैसे पत्नी बनेंगे इसलिए अगले जन्म में भगवान ने बोला कि आप मैं जब कृष्ण के रूप में आऊँगा आप लोग उनका रानी के रूप में आप होंगे तभी आप सेवा कर पाओगे तभी इस तरह हाँ इस तरह भगवान की सेवा करते समय अलग अलग लोग अलग अलग इच्छा उनको उत्पन्न होता है शायद आपको मालूम होगा बलि महाराज के सब संपत्ति को तीन पग में भगवान वामन देव ने माप लिया ना सब छीन लिया उसके पहले एक घटना घटी जब ये छोटा ब्राह्मण ड्वार्फ ब्राह्मण ये जो बट्टू ब्राह्मण तो ये जब आया था वामन देव एक छतरी पकड़कर हाथ में एकदम तेजस्वी उस ब्राह्मण को देखकर सब लोग खड़े हो गए सब लोग ने दंडवत प्रणाम की तभी बलि महाराज इस ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि बलि महाराज बड़े राजा था दानी व्यक्ति था तो ऐसे ब्राह्मण को दान देने में बड़ा आनंद आता था उनको तो सोचा कि ये ब्राह्मण को दान देने से मुझे बहुत पुण्य मिलेगा मुझे उस समय बलि महाराज की बहन भी साथ में खड़ी थी उसने भी देखा इस ब्राह्मण को तो इस छोटे बच्चा वामन देव को देखकर वो तो खुद ही भगवान है ना वो इसलिए बहुत सर्व आकर्षक हैं सबको आकर्षित किया उन्होंने अपनी ओर उनके सुंदरता के द्वारा तभी बलि महाराज की बहन ने सोचा कि मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह के बच्चे मुझे हो तो उस बच्चे को मैं दूध पिला सकती हूँ इस तरह दूध पिलाने की इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद ऐसा घटना घटी वामन देव एक त्रिविक्रम बनकर बहुत बड़ा आकार धारण करके तीनों लोगों को दो पांव में माप लिया उन्होंने जब देखा कि मेरा भाई बलि महाराज उनको गिरफ्तार कर दिया भगवान ने बांध दिया है वर्णपाश से और अभी सब कुछ खो बैठा है वो तो वही स्त्री जो बलि महाराज की बहन थी वो बहुत कुपित हो गई वामन देव के ऊपर अरे ये छोटा बालक के रूप में आया अभी रूप आकार बदल दिया उसने तो उसको लगा कि मुझे मारना चाहिए उसको ऐसे लगा उनको ऐसे एक क्रोध उत्पन्न हुआ उनके हृदय में तो दो भावनाएं उठी उसके हृदय में क्या है दूध पिलाने की इच्छा और मारने की इच्छा इसलिए अगले जन्म में उसको क्या जन्म मिला मालूम आपको पूतना का जन्म मिला दूध भी पिलाया और मारने की प्रयत्न भी किया लेकिन भगवान को कौन मार सकता कोई नहीं मार सकता मारने की प्रयत्न मिला करने के लिए उनको बस इतना ही हुआ तो भगवान ने उस पूतना को मार दिया और उनको धात्री का स्थान दिया भगवत धाम में इसे तो पूतना के उनके बलि महाराज के बहन के हृदय में ऐसे इच्छा हुआ इसलिए भगवान ने एक छोटे नन्हे मुन्ने बालक बनकर उनके गोद में आकर लेट गए पूतना के गोद में है ना इसलिए भगवान बालक बने उनके सामने इस तरह कोई चाहता है भगवान मेरे मित्र बने भगवान मित्र बनते हैं कोई सोचते हैं कि भगवान मेरे पति बने तो भगवान उनके लिए पति के रूप में आते हैं और जो जीव भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकारना चाहते हैं तो उनको पति के रूप में स्वीकार कर भगवान उनको द्वारका में एक रानी का पदवी देकर उनसे उस भाव में वो रानियाँ सेवा करती हैं उनको ये पहला पॉइंट बोलते हैं प्रभुपाद जी भगवान को कोसो मत जीव के हृदय में ऐसे इच्छा है इसलिए भगवान ने ऐसे स्थिति उनको दिया है, ये पहला पॉइंट बोलते हैं प्रभुपाद जी। दूसरा पॉइंट बोलते हैं, ये सब गोपियाँ वृंदावन में और ये द्वारका के रानियाँ, ये सब लोगों ने कठोर तपस्या किया है, हाँ, और यज्ञ किया है, तपस किया है, दान दिया है पूर्व जन्मों में, ऐसा नहीं कि उनको ऐसा ही मिल गया ये स्थान। किसी को मालूम है देवकी वसुदेव कितना तपस्या किया है? किसी को मालूम है क्या तपस्या किया उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए? किसी को मालूम है? सुना आपने? अगर आप सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे आप, हाँ? कितने साल तपस्या किया? 10,000 साल सिर्फ सूखा पत्ता खाया उन्होंने, बस 10,000 साल। हम एक दिन भी जी नहीं पाएंगे सूखा पत्ता खाकर, हाँ? 10,000 साल आप पढ़ेंगे, भागवत में पढ़िए आप देखेंगे आप, कठोर तपस्या किया कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। हम लोग स्वप्न में भी सोच नहीं सकते हैं। आप हमारे ध्रुव महाराज के इसमें देखें, कथा में एक पत्ता खा रहा है वो ध्रुव महाराज, देखा आपने? इस तरह जंगल का पत्ता खाकर जीवन बिताया, जीवन यापन किया है इसे। इस तरह हरेक गोपी रानी इन लोगों ने तपस्या बहुत किया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही स्थिति उनको मिल गया। इस तरह अगर कोई भक्त बहुत सालों से तपस्या करके, और एक उदाहरण बताएंगे आपको, हमने पढ़ा था कि एक था एक शिव जी का भक्त था, वो सत्ययुग में रहता था। सत्ययुग में 3,000 साल, सत्ययुग में लोग कितना साल रहते हैं? 1,00,000 साल रहते हैं। तो 1,00,000 साल में 3,000 साल, इसका मतलब है अगर आपके जीवन में 3 साल, करेक्ट है ना, अगर 100 साल आप जीते हो उसमें 3 साल, हाँ, इस तरह से 3,000 साल उसने क्या किया, हर दिन एक पुष्करणी में जाकर कमल को तोड़कर लाकर, ऐसे 100 कमल को साथ में लेकर वो एक माला बनाता था हर दिन, हाँ, 100 कमल से बनाकर शिवजी शिवलिंग को पहनाता था। ऐसे किया उसने 3,000 साल। अंत में शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और आकर दर्शन दिया उसको, बोला कि हे वत्स, तुम इतना मेरी पूजा करते हो, मैं क्या करूँ तुमको? तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि आप भी खुद कृष्ण के भक्त हैं, आप भी माला घुमाते हैं, फेरते हैं, नाम जपते हैं भगवान के, आप मुझे कृष्ण से इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मुझे परिचय करा दीजिए। तो शिवजी बोले तदास्तु, ज़रूर तुमको मौका मिलेगा, चिंता मत करो, जल्दी ही जल्दी मौका मिल जाएगा तुमको। तो उस जन्म तो पूरा हो गया उसका, तो अगले जन्म में वो बना सुदामा नाम का एक माली, हाँ, माली बना किधर? मथुरा में, माली बनकर उधर रहा, एक फल वाला, फूल वाला, ऐसे बनकर उधर रहा मथुरा में। तो अचानक कृष्ण अपने आप आ गए उसके दुकान के अंदर, उसने बुलाया भी नहीं, हाँ, अपने आप कृष्ण और बलराम आ गए। और आते ही कृष्ण को एक हार पहनाया, बलराम को पहनाया और दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने पूछा तुमको क्या चाहिए? वो बोला कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब जीव राशियाँ जो दुखित हैं इस दुनिया में, दुख से पीड़ित हैं, उनको आप निवारण दो और वो लोग आपके भक्त भक्ति में जुड़ जाए, हाँ। लेकिन भगवान ने बोला, देखो सुदामा, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, जीवन भर तुमको जो भी ज़रूरत है जब प्राप्त हो सब प्राप्त हो जाएगा तुमको, हाँ, और मृत्यु के बाद तुम मेरे लोक में आ जाओगे, गोलोक में। ऐसे भगवान ने आशीर्वाद दिया उनको। तो ये शिव जी के करुणा कृपा से उसको प्राप्त हुआ। लेकिन मैं उदाहरण क्यों बोला आपको, कोई बता सकते हैं उदाहरण मैंने क्यों बोला आपको? हाँ, अलग अलग लोग जो इच्छा करते हैं उसके अनुसार उनको पदवी मिलता है। उसकी इच्छा क्या था? कृष्ण के दर्शन करो, तो कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो गया। पहले उसका धंधा क्या था? वो फूल वाला था, अभी भी वो फूल वाला बना, लेकिन पहले शिव जी को किया और शिव जी के आशीर्वाद से कृष्ण के संग प्राप्त हुआ उसको। इस तरह जो मथुरा में जो टेलर था वो भी टेलर था पहले रामलीला में भी, हाँ, वो राम सीताराम लक्ष्मण के लिए उन्होंने नए नए कपड़े पहने थे, बनाए थे उन्होंने, किस टाइम? उनकी शादी के टाइम बनाया था उन्होंने। वो तो एक जनक महाराज के नीचे एक छोटा राजा थे, वो छोटा राजा के एक टेलर था वो, लेकिन बहुत मशहूर टेलर था वो, हाँ। तो इसलिए वो टेलर को विनती किया गया कि तुम बनाओ भगवान के लिए कपड़ा, किया, लेकिन पैसा वसूल किया उन्होंने उस राजा से, क्योंकि जब हम कुछ काम करते हैं किसी के लिए हम पैसा उनके उनसे पैसा लेते हैं ना, पैसा ले आता हो। लेकिन शादी के दिन जब देखा उसने सीताराम कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे पहने हैं, उसको बहुत बुरा लगा कि मुझे पैसा नहीं लेना था, फ्री में करना था सेवा के रूप में, तो उसको बार बार मन में इस बात उठने लगा कि कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं, तो कभी मौका मिले मुझे और एक बार मौका मिले मैं इनको फ्री में सेवा के रूप में मैं करूँगा। तो अगले जन्म उसका भी जन्म उसी लाइन में मिल गया मथुरा में, करेक्ट है ना। वो क्या बना, वो टेलर बना। तो कृष्ण बलराम आ गए कुछ कपड़े लेकर, क्या हमको सिला कर दोगे? वो बोला क्यों नहीं, सिला कर दिया उनको भगवान को, खुद ही पहनाए भगवान को ऐसे। तो जो भगवान के लिए कपड़ा सिलाना चाहता है वो भगवान का टेलर बनता है, कोई भगवान को हार पहनाना चाहता है वो फूल वाला बनता है, कोई भगवान के मित्र बनना चाहता है मित्र बनता है, कोई भगवान के पत्नी बनना चाहती है चाहता कोई जी उसको भगवान पत्नी बना लेते हैं, इस तरह पर बज बताते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि वो लोगों ने वो तपस्या की है बहुत है। तीसरा प्रभुपाद जी बोलते हैं उनके संबंध में किसी भी तरह का भौतिक संबंध नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्वरूप इन वंस प्योर स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ स्वरूप द रिलेशन बिकम्स मैनिफेस्ट विदाउट मंडेन अफिनिटी, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। इसका मतलब क्या है, भौतिक संबंध और आध्यात्मिक संबंध में क्या है? देखिए भगवान आप देखेंगे ये रानियां जो हैं द्वारका के, वो लोगों ने अपने जीवन की व्हाट इज एम्बिशन लक्ष्य को बता रही हैं आपस में चर्चा करते समय। एक रानी बोलती है कि मैं जन्म जन्म में मैं कृष्ण की पत्नी बनकर उनके पदकमलों की सेवा करना चाहती हूँ। तो एक है उसमें रानी सत्या, वो बोलती है कि मैं कृष्ण के पांव दुलाना चाहती हूँ हर जन्म जन्म में। ये कालिंदी, कालिंदी बोलती है ऐसे है? कालिंदी बोलती है इस तरह। अलग अलग रानी आपस में बातचीत करती हैं, बातचीत करते उनको एक ही इच्छा होता है कि मैं कृष्ण से कभी बिछुड़ ना जाऊँ, कैसे मैं हर जन्म इनकी पदकमलों की सेवा करूँ। तो और ये जो 16,000 रानियाँ हैं वो बोल रही हैं कि हमको वृंदावनवासी जैसे बनना है और कृष्ण के लिए इस तरह प्रेममय सेवा करना है हमें। हम सरल से सरल परिवार में भी हम जन्मे लेकिन हम कृष्ण के पदकमलों को कभी ना छोड़े, इस तरह। तो प्रभु जी बोलते हैं कि उनका संबंध दिव्य है एकदम। ये भौतिक दुनिया के संबंध जैसे नहीं, आजकल के आप देखेंगे भौतिक दुनिया में पुरुष स्त्री का क्या संबंध है। पुरुष सोचता है कि स्त्री को मैं भोगूँ और स्त्री सोचते हैं कि पुरुष के पास उसका पैकेट कितना बड़ा है, पैसा कितना है या क्या मुझे। ऐसा बोला जाता है कि जब शादी होता है माता जो होती है वो देखते हैं कि ये लड़का के पास कितना पैसा है वो देखते हैं, पिताजी देखते हैं कि ये फॉरेन जाकर आया क्या, इसका पढ़ाई क्या है, वो पिताजी देखते हैं। और उस लड़की जो शादी करने वाली है उसके साथ वो क्या देखती है, वो लड़का कितना खूबसूरत है और कितना मधुर तरीके से बातचीत करता है, मीठे मीठे बात करता है, इतना ही देखती है वो बस। और बाकी लोग देखते हैं फीस्ट क्या है शादी के दिन, उनका बाकी कुछ चिंता नहीं उनका। इस तरह अलग अलग लोगों का अलग अलग अपेक्षा होता है ना, इस तरह जब शादी होता है इसे। इस तरह साधारणतः लोगों का अपेक्षा क्या होता है, भौतिक चीज़ें होते हैं इस दुनिया में। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भगवान के जो रानियां हैं उनके संबंध एकदम आध्यात्मिक है, ऐसे बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और इधर बता रहे हैं कि चौथा पॉइंट बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर भगवान और उनके रानियां नहीं तो गोपियों के बीच में संबंध अगर भौतिक हो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे सुखदेव महाराज, चैतन्य महाप्रभु, ये लोग उसके प्रशंसा नहीं करते। अरे ये लोग दुनिया के सब संबंध को तोड़कर एक सन्यासी बनकर वैरागी बनकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं नाम जप में और शास्त्र के पठन में। ये लोग क्या स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में बात करेंगे? ये इससे ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि ये भौतिक दुनिया की जो इंद्रिय तृप्ति से कुछ लेना देना नहीं है सुखदेव गोस्वामी, चैत्र महापुरुष इत्यादि महात्मा पुरुषों के। लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर जो है कृष्णा और गोपियाँ के बीच में वो लोग भी बातचीत करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये दिव्य है। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं सोना और लोहा के बीच में क्या फर्क है। सोना जो है वो हाई क्वालिटी धातु है, धातु बोलते हैं उसको, धातु है, लेकिन लोहा जो है लो क्वालिटी है, सस्ता चीज़ है। तो काम वासना जो है वो किसके बराबर है? लोहे के बराबर। और प्रेम सोने के, दोनों को नीचे डालो क्लांग आवाज आएगा, लेकिन सोना सोना है, लोहा लोहा। इसलिए सीता ने बोला रावण को, जब रावण आया था ना उनको उठा कर लेके जाने के लिए, तभी सीता माता को पहले मालूम नहीं था, वो अच्छा वेशभूष पहन कर आया था, ऐसे बड़ा जटा था सर के ऊपर, हाथ में एक कमंडल लिया था, सब लेकर आ पहुंचा उधर। उसने सोचा कि सीता को उठा अपहरण करके लेके जाना चाहिए। तो सीता तो बोली बाली थी, जंगल में एक ऐसे एक साधु महात्मा को देखकर बहुत खुश हो गई, तुरंत उनको स्वागत किया और पानी दिया उनको पांव धोने के लिए। तो वो ऊपर नीचे देख रहा था सीता को और पूछा सीता को, वो सीता ने ऐसे देखा उनके बर्ताव को देखकर उनको थोड़ा बुरा लगा। वो बोले कि रामचंद्र और लक्ष्मण वो बाहर गए हैं, जल्दी आ जाएंगे, आप साधु महात्मा पांव धो लीजिए, थोड़ा मैं फल है हमारे पास तो मैं देती हूँ, आप लीजिए, मुझे अच्छा है कि मुझे मौका मिला आप जैसे साधु की सेवा करने के लिए, क्योंकि हम लोग जंगल वास कर रहे हैं अभी। इस तरह ऐसे ही प्लेट में फूल फल वगैरह लेकर आया और वो सीता का वर्णन करने लगा। वो बोलने लगा कि हे सीते, तुम्हारे आँखें कमल के पंखुड़ियों जैसे हैं, तुम्हारे चेहरा चंद्रमा के जैसा है, तुम्हारे कमर डमरू जैसा है, तुम्हारे चलना फिरना जैसे मोर नाचता है ऐसा है। इस तरह सीता ने बोला, अरे रोको, इस तरह की बातचीत मत करो, कौन हो तुम, क्योंकि ये शोभा नहीं देता एक साधु महात्मा को इस तरह की बातें करना। जब उन्होंने ये बात सुना कि कौन हो तुम, बोला सीता ने, बस खुश हो गया कि मेरे बारे में जानना चाहती है। सीता बोला, मैं दशानन रावण हूँ, लंका नरेश हूँ, अभी मैं उत्तर भारत जाकर मेरे भाई ये जो कुबेर उनको पराजित करके उनके पुष्प विमान को लाया हूँ सीते तुमको साथ में लेके जाने के लिए। मेरे 5,000 रानियाँ हैं लंका में, लेकिन तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुमको पटरानी बना दूंगा, सबसे ऊंचा रानियों की रानी बना दूंगा तुमको, तो आप तैयार हो जाओ मेरे साथ आओ। तुम क्या इस तरह जंगल में वास करने वाले राम लक्ष्मण दोनों जंगल में रहने वाले भिखारी हैं, उन लोगों के साथ तुम रहते हो, इतने खूबसूरत हो तुम, मेरे साथ रहने के लिए योग्य हो तुम, तो मेरे साथ आ जाओ। ऐसे जब बोला रावण, सीता इतने कुपित हो गई, उसने बोला, अरे मूर्ख, राम चंदन के बराबर है, तुम मिट्टी के बराबर हो, राम गरुड़ जी हैं, तुम कौवा हो, राम बड़े मेरु पर्वत हैं, तुम ये छोटे इतना छोटा पत्थर के बराबर हो तुम, और राम बड़े समुद्र के बराबर है, तुम जो एक गाय के खुर में रहने वाला जितना छोटा पानी उस तरह का पानी हो तुम, राम सोने के बराबर है और तुम लोहा के बराबर हो। इस तरह प्रेम और काम के बीच में फर्क क्या है वो समझा रही है वो सीता बोल रही है ऐसे। इस तरह हम लोग ये समझ लेना चाहिए, बता रहे हैं प्रभुपाद जी इधर कि अगर ये विषय ये द्वारका के रानियाँ नहीं तो गोपियों के बारे में जो चल रहा है, ये एक स्त्री पुरुष का आकर्षण का विषय हो तो महात्मा पुरुष लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ये प्रेम का परिभाषा है। तो आप लोग देखेंगे वृंदावन वासी 10 साल तक रहे कृष्ण के साथ, 10 साल के बाद कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए और 13 उम्र में भगवान मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। तो उसके बाद वृंदावन वासियों ने भगवान से मुलाकात हुआ उनको किधर मालूम है आपको, किसी को मालूम है? कुरुक्षेत्र में। हाँ, उस समय कुरुक्षेत्र में भगवान का उम्र था 125। हाँ, तो वो लोग थे कृष्ण के साथ 10 साल और कितने साल बिछड़ गए थे? हाँ, 115 साल। लेकिन 115 साल के बाद भी उनके हृदय में जितना पहले प्रेम था उतना ही प्रेम था और वो 115 साल भी सेवा करते रहे कृष्ण के लिए, हर दिन कुकिंग करते रहे, आज आ जाएंगे कृष्ण, आज आ जाएंगे कृष्ण करके। ये प्रेम का परिभाषा है। ऐसा नहीं कि अगर आप देखते हैं दुनिया में एक लड़का लड़की साथ में फ्रेंडशिप जोड़ते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एक को छोड़कर दूसरे के पास भाग जाते हैं। हम देखते हैं दुनिया में ये गोपियाँ वृंदावन वासियाँ ऐसे नहीं थे। 115 साल भगवान की अनुपस्थिति में भी उनके ऊपर जो प्रेम था उसको बोला नहीं कभी उन्होंने। तो ये प्रेम का लक्षण है कि ये जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उससे बिछड़ने से भी ये घटता नहीं, प्रेम प्रेम का वर्धन होता रहता है उनका स्मरण बार बार करके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि महान पुरुष इस दिव्य प्रेम की बहुत गुणगान किया है। आगे बताते हैं पांचवा कारण। प्रभुपाद जी बोलते हैं 16,100 ये लड़कियां वो राजकुमारी थे बड़े बड़े राजा के, और भौमासुर ने उनको बलात्कार करके चोरी करके उनको लेके आकर अपने जेल में रख दिया उनको। और लेकिन ये लड़कियां प्रार्थना कर रही थी कृष्ण से, कृष्ण एक दिन आए और हम लोगों को इस जेल से बचाए, इस तरह। और भगवान उनके ऊपर कृपा दिखाकर एक दिन आ पहुँचे उधर, भौमासुर को मार दिया, मुरा नाम का एक असुर था उसको भी मारा उन्होंने। इस तरह करने के बाद भगवान ने उनको रिलीज़ कर दिया जेल से। तभी भगवान ने बोला, ये लड़कियों को बोला कि उन्होंने देखो राजकुमारियाँ आप लोगों को अभी मुक्ति मिल गया, निकल जाओ आप लोग अपने अपने पिताजी के पास चले जाओ, अपने राज्य में पहुंच जाओ। लेकिन एक भी राजकुमारी उधर से निकलने के लिए तैयार नहीं थी। वो लोगों ने बोला कि ये इन्होंने अपहरण करके लाया है हम लोगों को, और इस तरह अभी हम पिताजी के पास जाएंगे कोई हमारा शादी नहीं करेगा, ऐसे बोले। तो भगवान ने बोला मैं क्या करूँ, तो बोले आप ही शादी कर लो। तो भगवान ने तुरंत ऑल राइट बोल दिया, सबके शादी करके सबको भिजवा दिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर, उनको एक एक महल देकर द्वारका में। इसलिए 16,108 रानियाँ हुई हो, 8 रानियाँ बहुत खास रानियाँ जैसे रुक्मिणी सत्यभामा ऐसे हैं, और ये 16,100 हैं। तो प्रभा जी बोल रहे हैं कि साधारण तरीके से देखा जाए, सामुदायिक स्तर पर देखा जाए, ये सब पतित लड़की माने जाएंगे। क्योंकि अगर एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर किसी के साथ भाग गई, और वो जिसके साथ भाग गई वो भी छोड़ दिया, उसको माँ बाप भी छोड़ दिए, तो स्त्री को कैसे माना जाता है? पतित माना जाता है। आजकल के ज़माने में बहुत होता है ऐसे, क्योंकि एक लड़का कुछ प्रलोभन दिखाता है, बोलता है कि मैं शादी करूँगा तुमसे, लेकिन एक लड़की को लेके जाता है और वो करता है और छोड़ देता है, यूज़ एंड थ्रो, यूज़ करता है उसको, थ्रो कर देता है, और गर्भवती हो जाती है, वो रोती है, वो बोलता है नहीं नहीं तुम अबॉर्शन कर दो, तुमको भी चिंता नहीं मुझे भी चिंता नहीं। इस तरह बोलने वाले अनेक मूर्ख धूर्त लड़के लोग भी हैं ऐसे, वो पतित लड़की माने जाएगी। इस तरह ये भी 16,100 राजकुमारियाँ थी पहले, लेकिन ये भौमासुर उन सबको अपने भोग के लिए लेके आया, लेके आकर उनको जेल खाने में रखा था ऐसे। तो ऐसे लड़कियों को शादी होकर सेटल होकर उनको भविष्य उज्ज्वल भविष्य मिलना बहुत दुर्लभ था, असंभव था, खास करके उस जमाने में बहुत असंभव था ऐसे। लेकिन ऐसे पतित से पतित लड़कियों को भी लेकर भगवान अपने आप स्वीकारने के लिए तैयार थे भगवान, क्योंकि भगवान ने देखा कि उनका स्थिति ऐसा है कि उनको कोई शादी नहीं करेगा, तो भगवान ने अपना आश्रय प्रदान किया किया उनको ऐसे। तो इसी तरह आप देखेंगे हिप्पी लोग जो होते अमेरिका में, वो लोग धनी खानदान में जन्मे थे, बच्चे थे वो धनी खानदान में, और बड़े पढ़े लिखे भी थे, कॉलेज जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनको जीवन में एक तरह का बोर आने लगा। बोरडम को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोर मालूम है सबको? हाँ, बोर हो गया बोलते हैं ना, हाँ हाँ, ऊब जाना। हाँ, वो लोग ऊब गए। वो लोगों ने सोचा कि क्या है, अरे पैसा है, हमने शराब भी पी लिया है, सिगरेट भी पी लिया है, ड्रग भी ले लिया है, अवैध स्त्री संग गमन भी किया है, एक एक पुरुष दर्जनों लड़कियों के साथ घूमते थे एक के बाद एक, सर एक एक लड़की दर्जनों पुरुषों के साथ घूमती थी। जीवन में जितना पाप का आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा वो लोग करते थे, उसका लिस्ट जो भी हो आपके पास लिस्ट में जो भी नहीं है वो भी किया था उन्होंने ऐसे इतना है। ऐसा हमने सुना एक जब मुकुंद और जानकी ये उनका माइकन जैन था उनका नाम, उधर वो लोग तो थे इसमें न्यूयॉर्क में थे, वो लोग ने प्रभुपा जी को बोला कि हम सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, वो हमारा बस्ती है, हम जानते हैं उधर उधर एक प्रचार काम हम शुरू करेंगे, आपको बुलाएंगे उधर। तो माइकन जैन गए थे उधर। तो उधर जाने के बाद उन्होंने एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मिला, उनका नाम था सैम और मार्जोरी। ये लोगों ने इतना ड्रग पिया था, इतने वो मृत्यु के एकदम निकट आ गए थे वो लोग, और वो रो भी रहे थे क्योंकि ये ड्रग बंद भी नहीं कर पा रहे हैं और खाएंगे तो मर भी जाएंगे, ऐसे डॉक्टर ने बोला है। ऐसा भी एक था भारत में भी एक व्यक्ति जो सिगरेट पीने वाला था, दिन में 4-5 सिगरेट पैकेट पीता था वो। तो डॉक्टर ने बोला देखो इतना तुमने पी लिया है, अभी आगे पियोगे नहीं तो मर जाओगे है? लेकिन वो छोड़ नहीं पाया। तो ये एक हफ्ते के बाद मर गया वो, लेकिन मुंह में एक सिगरेट था, साथ साथ मर गया वो, पीते पीते मर गया वो। ऐसे इस तरह सैम और मार्जोरी का भी बुरा हाल था, ऐसे ही छोड़ नहीं पा रहे थे वो, इतना क्या बोलते हैं उसको, एडिक्शन को क्या बोलते हैं, लत बोलते हैं उसको, हाँ लत लग गया उनको, छोड़ नहीं पाया। उस समय ये माइक और जैन जाकर पहुंचे उसके पास, वो लोग ये दोनों बोले देखो हमारे पास एक टेक्निक है, तकनीकी है, अगर आप इसको स्वीकारोगे तो तुम छोड़ पाओगे उसको। क्या बोला, आओ हमारे साथ, हमारे साथ ठहरो। तो उनको बुलाया तो सुबह मंगल आरती किया, संसार दावानला, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, उसके बाद नाम जप। तो ये सिखाया उनको, एक हफ्ता किया लोगों ने, तो एक हफ्ता करके छोड़ दिया अपने बुरा आदत। और एक हफ्ता किया, ऐसे 2-3 महीने उनके साथ रहा। उन्होंने बोला कि क्या ये महामंत्र में इस तरह का कुछ जादू है इसमें, कैसे ये करने से हमारा गलत इच्छाएं सब हम छोड़ पा रहे हैं। इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो सैम जो था, सैम मार्जोरी, सैम बड़ा ही वॉज अ वेरी वो इतने म्यूजिशियन लोगों के साथ संबंध था उसका, वो खुद ही बड़ा हीरो था वो, अनेक लोगों को जानता था वो। तो वो बोला कि वो बहुत प्रसन्न हो गया 3 महीने में प्रैक्टिस करके। उसके बाद जाकर अपने मित्रों को बुलाया, एक टिमोथी लैरी करके वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो सब ड्रग एडिक्ट जो थे उनके लीडर थे वो, जैसे खलनायक बोलते हैं ना ऐसे ऐसे लोगों का वो लीडर थे। उनको भी बुलाकर ऐसे लोगों को इकट्ठा किया उसने, बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया उसने। तो बोला अभी बुलाओ तुम्हारे स्वामी जी को, प्रभुपाद जी को बुलाओ। तो तभी प्रभुपाद जी आए, जब सैन फ्रांसिस्को वहाँ पहुँचे, सबको सबने एक एक दोनों बाजू में खड़े होकर प्रभुपाद जी को एक एक रोज दिया। प्रभुपाद जी को बड़ा आश्चर्य हो कि अरे 50 लोग कैसे तैयार हो गए अचानक। तो प्रभुपाद जाकर प्रवचन वगैरह दिया। वो सैम और मार्जरी बने श्याम सुंदर और मालती माता जी, वो लोग बने ऐसे। इस तरह हिप्पी लोगों को सरकार सुधार नहीं पाया, सरकार का बात सुन नहीं रहे थे वो, टीचरों की बात सुन नहीं रहे थे, माता पिता की बात नहीं सुन रहे थे, पुलिस की बात भी सुन नहीं रहे थे, मिलिट्री का भी बात सुन नहीं रहे थे वो। इतना तक कि बार बार मिलिट्री और पुलिस के लोग उनको पकड़ पकड़ कर घर में जाकर डाल देते थे और घर को छोड़कर ये लोग भाग जाते थे ऐसे, ये सब आदत में पड़ना। लेकिन जब प्रभुपाद ने बोला छोड़ो, छोड़ दिया वो लोगों ने सब बुरे आदत। प्रभुपाद ने बोला ड्रग छोड़ो, माला पकड़ो। तो माला पकड़ा हाथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह नाम जप जप कर बुरे आदतें सब छूट गए। जो लोग गोमांस खाते थे वो लोग कांदा लहसुन भी खाना छोड़ दिया, जो लोग शराब पीते थे वो लोग चाय काफ़ी पीना भी छोड़ दिया। इस तरह आप देखेंगे ऐसे वो लोग पतित अवस्था में थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनकी उद्धार किया, उनको कृष्ण के साथ जोड़ा। और प्रभुपाद जी ने एक दिन देखा वो लोग हिप्पी जो पहले थे वो लोग एकदम क्लीन शेव करके अच्छा शिकार रखते हुए तिलक पहनकर, कंटीमाला पहनकर, सैफरान ऐसे कपड़े पहनकर प्रभुपाद जी के सामने आए मुस्कुराते हुए। प्रभुपाद जी बोले अरे आप लोग पहले धारावेश थे, आप लोग धारावेश का मतलब है जैसे बड़ा दाढ़ी, बड़ा मूंछ, बड़ा लंबे बाल, देखने में पिशाच भूत जैसे दिखते थे पहले, अभी एकदम शेव करके चकाचक कपड़े पहनकर लग रहा है कि मानो आप लोग वैकुंठ से उतरे हो, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। इतना परिवर्तन लाया उन्होंने ऐसे। तो इसी तरह भगवान ने भी देखा कि ये स्त्री जो भी हैं जेल में, सब पतित अवस्था में हैं, कोई शादी नहीं करेंगे इनको। भगवान ने सोचा कि ये सबके हृदय में मेरे लिए भक्ति भावना है और मेरे मुझे पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्त्रियाँ साधारण से नहीं थी, जैसे हमने बोला आपको, पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत तपस्या करके कृष्ण का सीधा दर्शन प्राप्त करने की ऐसे मौका मिला उनको, समझा ना आपने। इस तरह ये पांचवा पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। छठा पॉइंट बोल रहे हैं, एज सून एज द डिवोटीज, दिस इज इन परपोर्ट 30 श्लोक का परपोर्ट, एज सून एज द डिवोटीज सरेंडर इन टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड सिंसियरली, द लॉर्ड एक्सेप्ट दैम एंड दस द डिवोटीज एट वंस बिकम फ्री फ्रॉम ऑल मेटीरियल कंटामिनेशंस। And then women, merchants and laborers are not very intelligent. And thus it is very difficult for them to understand. Prabhupada ji bol rahe hain, Gita mein Bhagwan bolte hain ki, Striyo vaishyas tata shudras te api yanti param gati. Striyaan, vaishya log ka matlab hai business log. Aur shudra, jo log vedon ko padhte nahi hain, lekin gurukul mein bhi jate nahi hain. ऐसे तीन लोगों के बारे में बोलते हैं, स्त्रियो वैशाखता शूद्रास्ते अपियांति पराम गतिम, वो भी मैं मुझे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान बताते हैं। तो क्यों ये शब्द अपि यूज करते हैं भगवान, इसका कारण है, कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जब थे तभी कयाधु ने नारद मुनि से लेक्चर सुना। इधर आप हमारे मंदिर में पीछे देखेंगे, कयाधु बैठ कर नारद मुनि की प्रवचन सुन रही है, लेकिन प्रवचन सुनते समय उनका मन विचलित हो रहा था। उनका कारण क्या था, सोच रहे थे कि मेरा पति कब वापस लौटेगा, क्योंकि एक बार देवता लोगों ने मुझे पकड़कर मेरे बच्चे को मारने की प्रयत्न की, लेकिन नारद मुनि ने बचाया, हमारे बच्चे का जान बचाया। तो अभी दूसरी बार अगर देवता लोग मुझे पकड़ेंगे, क्योंकि देवता लोगों ने सोचा कि राक्षस का बेटा राक्षस ही बनेगा, सोचा उन्होंने, है ना, लेकिन नारद मुनि ने उनको रोका था। इसलिए पति की चिंता कर रही थी, साथ साथ बच्चे की भी चिंता कर रही थी, इस तरह भौतिक चिंता के कारण वह सुन नहीं पाई प्रवचन। इसलिए कायद का नाम ज़्यादा आता नहीं है बाद में, लेकिन किसका नाम आता है, प्रहलाद का, क्योंकि जो सुना उन्होंने लागू किया जीवन में, शुद्ध भक्त बन गए वो। इस तरह हम सुनते हैं, इस तरह कभी कभी देखा जाता है कि स्त्रियों के हृदय में बड़ा श्रद्धा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कुंती महारानी की प्रार्थना में, स्त्रियों का बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, मंदिर में जब आते हैं कुछ वाद विवाद किए बिना झुकते हैं तुरंत भगवान के सामने, भगवान के लिए फूल लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, भगवान के सेवा में जुड़ जाते हैं, उनके अंदर श्रद्धा है। लेकिन पुरुष जो होता है वो थोड़ा कुतर्क विवाद करता है, तर्क करना, विवाद करना, क्यों झुकना है हमको, कैसे हम मान सकते हैं कि भगवान के विग्रह में और भगवान में भिन्नता नहीं है, इस तरह कुछ ना कुछ वितंडावाद करेगा पुरुष। लेकिन स्त्रियाँ कुछ वदन नहीं करेगी, तो उनके लिए ये बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है स्त्रियों के लिए, किसी भी साधु बाबा के पीछे पड़ जाएगी और धोखा खाएगी, और भारत में ऐसे साधु बाबाओं की कमी नहीं है। इतने अनेक लोग घोषणा कर रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, अनेक स्त्रियों को उन्होंने गुमराहट बोलते हैं, गुमराहट बोलते हैं, हाँ गुमराह किया है उन्होंने, धोखा दिया है इसे, क्योंकि उनके कोमल हृदय और विश्वास का दुष्प्रयोग किया है ऐसे लोगों ने। लेकिन पुरुष लोग जो हैं थोड़े बुद्धिमान हैं, अगर कोई इस तरह का गुमराह करता तो तुरंत समझ लेते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, जान लेते हैं। इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेन आर रैशनल, वुमेन आर इमोशनल, इस तरह एक स्लोगन है, मेन आर बॉर्न इन मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका अलग अलग साइको फिजिकल नेचर है, हिंदी में क्या बोलेंगे, साइको फिजिकल, उनका स्वभाव अलग अलग है ऐसे। तो घर में भी आप देखेंगे पति पत्नी जो होते हैं, अगर प्रॉपर पति पत्नी हो, शास्त्र बोलते हैं कि पति हमेशा बोलेगा कि गुरु ने ऐसा बोला है वैसा बोला है, गंभीर बनना हमको भक्ति में, भगवद्धाम वापस लौट चलना है, ऐसे बोलेगा पति। पति ऊपर देगा, पत्नी बोलेगी अरे पहले घर को देखो, बच्चों को देखो, थोड़ा कमा कर पैसा लेके आओ, एक गाड़ी लो, घर लो, अरे ठीक रखो सब चीज़। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्त्री पुरुष को ऐसे बनाया है। ये एक व्यक्ति है जो इस दुनिया के चीज़ों को देखती है घर में, तो दूसरा व्यक्ति है वो परलोक के लिए अरेंजमेंट कर रहा है, वो दोनों का जुड़ने से परिवार अच्छा हो जाता है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ दूसरा चीज़ क्या है, कभी कभी पत्नी गंभीर है भक्ति में बहुत, लेकिन पति इस दुनिया का देखता है। कम से कम भगवान दोनों में से एक को ऐसे किया है, एक इस उल्टा कर दिया भगवान ने कभी है कलयुग में ऐसे। आजकल कुछ कुछ स्त्रियां काम कर रही है और पति घर में बर्तन सफाई कर रहा है और उसकी साड़ी धो रहा है, सब कुछ कर रहा है ऐसे। ऐसे भी कुछ लोग हैं ऐसे, जो भी हो लेकिन दोनों में शिवाय भूतस्य भवाय शिवाय शिवाय भूतस्य भवाय भूत ऐसे बताते हैं। इसका मतलब क्या है, ये भवाय का मतलब है भव संहर्तुम है, ये भवसागर को खत्म करके भाव के दुनिया जो भगवत धाम है उधर जाने के लिए जो आयोजन करते हैं उनमें से एक होना चाहिए। परिवार में एक व्यक्ति को स्पिरिचुअल सीरियसनेस आध्यात्मिक विषय में गंभीरता होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को क्या है इस दुनिया की चीज़ भी देखना चाहिए उनको, तो उनका संतुलन रहेगा परिवार में। अगर पति पत्नी दोनों बोलते हैं भागो भागो भगवत धाम लौट चलो, तो बच्चा बोलेगा अरे ख्याल कोई ख्याल नहीं रखते हमारा है? सब माता पिता दोनों भाग जाते हैं है? हमेशा माला लेकर घूमते हैं, प्रचार काम में घूमते हैं, हमको कौन देखेगा, तो बच्चा बिगड़ जाता है, है? बच्चा बोलता है आप लोगों ने टाइम नहीं दिया हमको, अभी मैं सिगरेट फूंकूंगा, शराब पीऊँगा, लड़कियों के साथ घूमूंगा, ऐसे बच्चा बिगड़ जाता है ऐसे। इसलिए एक को घर का ख्याल रखना चाहिए, दूसरे को भगवान के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और दोनों का संतुलन होना चाहिए इसे। इसलिए कभी कभी मेन रैशनल होने के कारण वो फिलासफी समझते हैं और स्त्रियाँ इमोशन होने के कारण भाव है उनके अंदर। तो भगवान स्त्रियाँ वैश्य कभी कभी स्त्रियाँ फिलासफी समझ नहीं पाती है, सो जाती हैं कभी है? जैसे अभी शिवजी बता रहे थे, बड़ा फिलासफी बोल रहे थे किसको, पार्वती को, भागवत का तीसरे स्कंद में आ गए तो थोड़ा नींद आ गया उनको, हमारे पार्वती माता को है? क्योंकि बड़ा फिलासफी आ गया तीसरे स्कंद में ऐसे है। उसके बाद एक तोता बैठा था वो पेड़ में, एक आम्रवन में है ना, वो तोता कौन था, शुक था, शुक शुकदेव सा। तो कथा शिवजी बोलते रहे और वो ऐसे बोलता रहा वो भी है? तो शिवजी ने सोचा कि ठीक है वो तो सुन रही है, वो आंख तो बंद है फिर भी सुन रही है। तो कभी कभी हमारे ब्रह्मचारी क्लास हम देते हैं, कुछ ब्रह्मचारी आंख बंद करके ऐसे ऐसे लेट जाते हैं तो तुरंत में एक प्रश्न पूछता था मैं, तो उनको सीधा उनको उठाता था, प्रभु जी आप जवाब दो, तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि सही जवाब देता है वो अरे जवाब कैसे दिया सही जवाब, वो बोल रहा है कि प्रभु जी सुन रहा था, प्रभु जी थोड़ा थकावट था इसलिए हम आराम कर रहे थे। तो कभी कभी लोग थोड़ा आंख बंद करके भी सुन लेते हैं। तो एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास आकर बोला कि स्वामी जी आपके क्लास में सब भक्त लोग सो जाते हैं। प्रभुपाद ने बोला ठीक है थोड़े समय सोएंगे लेकिन बाकी समय सुन रहे हैं ना। तो नहीं नहीं स्वामी जी मोस्टली देख रहा हूँ सो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला देखो अगर तुम बोल रहे हो कि सो रहे हैं, वो अगर सोने वाले भक्त इतने जग गए भक्ति में, वो सोला माला कर रहे हैं, तिलक पहने हैं, कंटी माला पहने हैं, मंदिर में रह रहे हैं ये लोग, इतना तीव्रता से भक्ति में सेवा में जुड़े हैं, अगर ये लोग सोते सोते इतना भक्ति में बढ़ गए तो उठेंगे तो पता नहीं कितना बढ़ेंगे। और प्रभुपाद जी बोले तुम जगे हो लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो तुम, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो एक्चुअली क्यों बोला ये सोने के बारे में, इसके पहले क्या पार्वती के बारे में बोला, साइकोफिजिकल नेचर। तो पार्वती जी थोड़ी सो गई क्योंकि फिलासफी उनको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं माताओं को पूछेंगे, माताएं आपको फिलासफी अच्छा लगता है लीला अच्छा लगता है आपको, देखिए उनका वोट लेंगे। आप में से कितने को लीला कथा अच्छा लगता है आपको पुराणों से, ठीक है कितने लोगों को फिलासफी अच्छा लगता है, हाँ देखिए कम समझ गए ना आप, उनको लीला अच्छा लगता है उनको। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी किताबों में भी दोनों को मिला कर दिया है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है फिलासफी ऐसा है। तो यही इसलिए भगवान बोल रहे हैं स्त्रिया वैश्यस तथा शूद्रा ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो फिलासफी कभी कभी कठिन चलता है उनको समझने के लिए। और वैश्य लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हमेशा पैसा गिनते रहते हैं और पैसे का साउंड उनको बहुत अच्छा लगता है, साउंड आता है। और कभी कभी मैंने सेठ जीओं को देखा है पैसा गिनते समय आंख बंद करके गिनते हैं, एक भी नोट मिस होता नहीं हुआ, देखा हमने इतना पक्का है, ऐसे 100-100 नोट इकट्ठा करके रबर बैंड लगा कर लगता है और ऐसे बढ़ता रहता है, उसको देख मुस्कुराता है, पैसा बढ़ता है ऐसे। तो ये लोग पैसे गिनने में समय बिताते हैं, माला गिनते नहीं कभी, है ना। माला दे दो बोलेंगे टाइम किधर है स्वामी जी, है टाइम मिलता नहीं, लेकिन पैसे गिनने के लिए टाइम है बहुत, है दिन भर घंटों घंटे गिनते हैं ऐसे। तो इसलिए ऐसे बनियाओं को भक्ति में लाना आसान काम नहीं है, है? लेकिन अगर कोई बनिया भक्ति में आ गया तो बड़ा भाग्यशाली है, है? अगर कोई बिजनेस भी कर रहा है भक्ति में भी आ गया तो बड़ी चीज़ है, बड़े पुण्यवान है। शायद हो सकता है माता पिता ने अच्छा संस्कृति दिया हो उनको। तो एक बार हमें एक ऐसे भागवत के मीटिंग में बुलाया था, हमने देखा कि बनिया लोग आयोजन अच्छा करते हैं भागवत के लिए, है? ये एकदम बड़ा सिल्वर रथ था बनाया था उन्होंने, वो भागवत को बिठा कर लेके जाने के लिए और स्वामी जी को बिठा कर लेके जाने के लिए सब कुछ अच्छा किया। लेकिन जब ऊपर जाकर वो स्वामी जी बैठ के मुझे पहले 20 मिनट बोलने के लिए बोला, मैं देखा पुरुष के पक्ष में बहुत कम लोग थे, माताओं के पक्ष में बहुत लोग थे। मैंने बोला अरे हम लोग जुलूस में आए, हम लोग उस समय बहुत से पुरुष थे, किधर गए साहब? वो बोले अपने अपने धंधे करने के लिए चले गए साहब, सिर्फ उद्घाटन था प्रोग्राम का इसलिए आए थे शुरुआत में, थोड़ा अपने बिजनेस से टाइम निकाल कर आधा घंटा के लिए आए थे, अभी अपने बिजनेस में चले गए। लेकिन कथा श्रवण, वो बोले कथा के लिए टाइम नहीं उनके पास, उनके बीबी को बिठा दिया कथा सुनने के लिए, अपने माता को बीबी को बिठा दिया, ऐसे बोले। तो बिजनेस लोगों को बिजनेस बहुत टाइट रहता है, पैसा बनाना है, टाइम नहीं है, इसलिए भगवान उनको भी ऐड करते हैं लिस्ट में, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्र। शूद्र का मतलब है उनको शास्त्रों इन विषयों में रुचि नहीं, वो परिश्रम करेगा कसरत करेगा लेकिन पढ़ेगा नहीं वो। जैसे मेरे इंजीनियरिंग क्लास में एक था लड़का, उसके पिताजी कोई तो गांव में किसान थे, तो उनके बेटे को बहुत पैसा देकर उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिट कर दिया। बेटा रो रहा था कि मुझे पढ़ना नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन पिताजी ने बोला नहीं तुमको करना ही है इंजीनियर, इंजीनियर बनना है, मुझे सारे गांव वालों को दिखाना है कि मेरा बेटा इंजीनियर है। वो बोला पिताजी आपके अहंकार की दृष्टि के लिए मैं कैसे पढ़ूंगा इंजीनियरिंग, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो पहला साल पूरा वाशआउट हो गया उसको, पिताजी वाशआउट का मतलब पूरा पेपर फेल हो गया उसका। तो उसको ट्यूशन में लगा दिया पिताजी, कॉलेज में भी पढ़ो ट्यूशन में भी पढ़ो। तो वो लड़के को मैं देखता था, वो क्या करता था क्लास में पीछे बेंच में जाकर सो जाता था वो आराम से पूरा क्लास, कभी कभी इतना सोता था कि आवाज़ बड़ा जोर से निकलता था ऐसे, है तभी टीचर को पता चलता था तभी, है लेकिन क्लास के अंत में जब बेल रिंग होता था ना तभी उठ जाता था, उठकर जाकर डस्टर लेकर बोर्ड को सफाई करो, है? और डस्टर से डस्ट निकालो और स्टाफ रूम में जाकर चाक पीस लेके आओ, सब रखकर वापस जाकर सो जाओ, है? दूसरे पीरियड में भी सो जाता था ऐसे। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि वो गुरुकुल के दिनों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुरुकुल में जाते थे, लेकिन शूद्र लोगों को उधर बिठा वो भाग ही जाएंगे, वो उनको बैठ कर श्लोक सुनना फिलासफी सुनना उनकी वश की बात नहीं है वो, है? इसलिए बताते हैं स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास थे अपि यान्ति, लेकिन ऐसे लोग भी मेरे भक्त बन सकते हैं भगवान बोलते हैं, है? ऐसे लोगों को शायद ज्ञान मार्ग योग मार्ग कठिन चलेगा, लेकिन भक्ति मार्ग इतना श्रेष्ठ मार्ग है, इस दुनिया के पतित से पतित जीवों को भी मैं मेरे पास ले लूँगा। ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवाः यद्यद्भुत क्रमपरायण शील शिक्षाः तिर्यं जना किमु अपि श्रुतधारणाये। श्रुतधारणाये का मतलब है जो भगवान के नामों को उच्चारण करके ध्यान से सुनते हैं उनका चित्त शुद्ध होकर पतित से पतित लोग भी महान से महान बन जाते हैं, लहान लोग महान बन जाते हैं, हा? ये नाम लेने से, हा? इस तरह भगवान बताते, इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये छठे पॉइंट में प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ऐसे जो एक बार मैंने बीच में गाया था आपको याद है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी के जैसे हम बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी के जैसे हम बुलाते, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोलिए कहते हैं भगवान माया सोना के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कहते हैं भगवान बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे हम नचाते नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से विष से हटाते चलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ये गीत में चार लोगों का नाम लिया है और चारों के चार स्त्रियां हैं, है ना। तो कौन नचाते हैं भगवान को, गोपियां। तो गोपियां जो हैं यशोदा के सहेलियां सखियां, वो छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जो होते हैं ना, उनको बुलाते हैं। किसी गोपी के हाथ में लड्डू है, किसी गोपी के हाथ में मिश्री है, किसी दूसरे गोपी के हाथ में माखन है। तो ये वृद्ध गोपियाँ हैं, बड़ी गोपियाँ हैं। तो कृष्ण को वो अपनी सर्कल बनाकर बैठी है, बीच में बुलाती है छोटे बालक को, बोलते हैं कि ये काना तुम नाचोगे तो मैं मिश्री दूंगी, तुम नाचोगे तो मैं माखन दूंगी, इस तरह उनको प्रलोभन देते हैं। और वो जब गाती हैं तो गोपाल नाचता भी है गाता भी है बहुत सुंदर तरीके से। तो उसके ताल के अनुसार नाचते हैं भगवान बहुत सुंदर तरीके से उस। और जब हरे 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 राम, तो इस तरह गोपियों के प्रलोभन से छोटा काना नाच कर उनसे याचना करके कहता है। तो इसलिए गोपियों का नाम लिया गया है, वो नचाते हैं कृष्ण को। इस तरह कौन उनको अच्छी तरह खिलाते हैं भगवान को, शबरी खिलाती है। और कौन भगवान को सुलाते हैं, मैया। और कौन भगवान को निस्सहाय भावना से पुकारती है, तो इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भगवान निरूपण करने के लिए आए कि इस तरह स्त्रियों को भी वैश्यों को भी किसी भी तरह को तरह के व्यक्ति को भी कोई भी हो भगवान स्वीकारना चाहते थे, अपना बनाना चाहते थे और दिखाना चाहते थे दुनिया को, इसलिए उनको स्वीकारा, ऐसे बोलते हैं। सातवां पॉइंट बोल रहे हैं, भगवान की सेवा में लग कर करेक्ट सातवां पॉइंट क्या है, क्यों भगवान ने इस तरह इन रानियों से शादी किया, ताकि उनको सेवा का मौका प्रदान करे। क्यों, क्योंकि उनकी सेवा भाव को देखकर सारे दुनिया सीख सकता है कैसे भगवान की सेवा आराधना करना चाहिए। ये सातवां पॉइंट बोल रहे हैं। और आठवां पॉइंट बोल रहे हैं, हाँ ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं कि ऐसे शादी किए अब सिर्फ भगवान ने, लेकिन उन सब रानियों की इच्छा को भी उन्होंने पूर्ति किया। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग में एक व्यक्ति एक पत्नी छोड़ो दो पत्नी चार पत्नी से शादी करेगा तो उनको संभाल नहीं पाएगा वो, लेकिन भगवान जो हैं एक्चुअली कलयुग में एक से शादी नहीं करना चाहिए। आपने शायद सुना होगा आपके दादाजी नहीं तो उनके दादाजी बहुत उनके जमाने में एक स्त्री से शादी करते थे, अगर बच्चा नहीं हुआ तो दूसरे स्त्री से शादी करते थे वो लोग। लेकिन वो लोग कैसे संभाल पाए, वो लोग इतने विरक्त पुरुष थे, दोनों बीवियों के साथ समान तरीके से वो बर्ताव करते थे, समानता के साथ। इसलिए दोनों बीवी शांत रहती थी, क्योंकि मालूम है कि पति जो विरक्त पति है, ज़्यादा भगवान के ऊपर ध्यान है उनका, इसलिए आपस में भी झगड़ा नहीं करती थी वो। लेकिन आजकल के ज़माने में एक आसक्त पुरुष दो लड़कियों से शादी करेगा तो क्या होगा, एक जो सुंदर है ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देगा तो दूसरा ऐसे कुपित हो जाएगी, दोनों के बीच में इनसिक्योरिटी आ जाएगा। जैसे सुरुचि और सुनीति के बीच में आना, दोनों में कौन खूबसूरत थी, सुरुचि, इसलिए उनका नाम रुचि है, और दूसरा कौन थी, सुनीति, वो नीति में बहुत निपुण थी, गुणवती थी। तो एक पत्नी थी गुणवती और दूसरा खूबसूरत थी, इसलिए हमारे उत्तानापाद का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना, उनको थोड़ा ज़्यादा अटैच हो गए सुरुचि से, इसके कारण गड़बड़ हो गया। लेकिन सुनीति जो थी वो थोड़ा शांत थी, अपने बच्चे को भी शांत करवाया उन्होंने, सब सौतेली ये जो स्टेप वाइफ को वाइफ होते हैं हाई से होते नहीं, अगर सुरुचि जैसे वो भी कोप करने वाली होती थी तो उत्तानापाद को चक्कर आता था है ना, वो संभाल नहीं पाते थे दोनों को ऐसे है ना। तो इसलिए उस जमाने में दशरथ जी जैसे, अभी दशरथ ने तीन रानियों के बीच में ये जो हुआ कैकेयी और मंत्रा के बातचीत में, उसमें भी ये आता है ना, मंत्रा ने कैकेयी को बोला, ये कैकेयी जब तुम्हारा बेटा राजा नहीं बनेगा, कौशल्या का बेटा राजा बन जाएगा, तुम्हारी ओर मुड़कर भी नहीं देखेगा दशरथ, वो कौशल्या बहुत श्रेष्ठ रानी बन जाएगी और तुम उसके नौकरानी बन जाओगी तुम, तभी उसका ईर्ष्या उत्पन्न हुआ। इस तरह का अगर ईर्ष्या उत्पन्न होगा पति दो पत्नियों के बीच में चटनी बन जाएगा वो, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में एक ही शादी करना चाहिए, एक ही स्त्री से एक पत्नी व्रत सबको धारण करना चाहिए, भगवान रामचंद्र की अनुयायी बनकर। लेकिन कृष्ण ऐसे भगवान, वो 16108 रानियों को भी शांत रख सकते हैं वो झगड़े किए बिना, और उनके बीच में अगर कभी झगड़ा होता तो भगवान हंसते हैं। जैसे एक बार नारद मुनि आकर भगवान के हाथ में एक पारिजात फूल दिया, भगवान ने पूछा, नारद मैं दो रानियों के बीच में खड़ा हूँ, तुम एक दे रहे हो मुझे, ये अच्छा नहीं है, तुम बता दो किसको दूँ मैं, रुक्मिणी को दूँ सत्य मामा को दूँ। तो नारद ने बोला, वो तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, आप निर्णय लो। तो भगवान ने अंत में किसको दिया, रुक्मिणी को दिया। तो सत्य मामा को थोड़ा कोप आ गया, लेकिन उनके कोप में भी भगवान आनंद लेते हैं। वो सत्य मामा ने हट किया, कोप किया, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं दिया आपने, तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, भविष्य में तुमको लेके जाऊंगा स्वर्ग में, तुमको एक पूरा पेड़ दे दूंगा तुमको। इस तरह भगवान उसको पेड़ ही दिला देते हैं पारिजात। तो प्रभा जी वो कोट करते हैं इधर, इस तरह भगवान मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी ला कर दे सकते हैं भगवान। पारिजात पेड़ को उखाड़ कर लेके आया स्वर्गलोक से भगवान ने, इस तरह यमलोक में जाकर गुरुपुत्र को लेके आकर गुरु को वापस लौटा दिया कृष्ण ने। ऐसे कृष्ण क्या करने के लिए सक्षम नहीं थे, सब कुछ कर सकते थे कृष्ण। इस तरह 16,000 रानियाँ भगवान से शादी करने के संबंध में प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया अलग अलग तात्पर्य में समझाते हैं, तो मैं सब कारण आपको बता दिया। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं एक सुंदर अध्याय में, 11वां अध्याय, जिधर भगवान कृष्ण अभी द्वारका पहुँच आ गए। तो द्वारका पहुँचने के पहले से हम लोग चर्चा कर लिया कि रानियों के बारे में, चर्चा हमारा हो गया। अभी यह अध्याय में जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं द्वारका में, खास विषय क्या है इसमें, द्वारका वासियों की भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, इससे हम लोग सीखना चाहिए कि कैसे हम हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण भावनामृत जो है उसको कैसे हम जगा सकते हैं हमारे हृदय में, और कैसे हमारे प्रेम को भगवान को प्रकट कराना चाहिए, वो हम इस अध्याय से हम सीखेंगे। पहला अनुवाद पढ़िए, पहला श्लोक 11वां अध्याय।
हरे कृष्ण। सूत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया।
भगवान सबको अपना न्यूज देने के लिए आ गया हूँ करके न्यूज देने के लिए भगवान ने क्या किया, शंख बजाया। दूसरा श्लोक पढ़िए।
श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा है।
एक सुंदर उपमा दिया जा रहा है इधर। तो भगवान ने अपने हाथ में सफेद शंख को पकड़ा था, पकड़कर अपने होंठों में रखकर बजाया, ऐसे बजाते हैं। तो भगवान के होंठों के लालिमा के कारण वो सफेद शंख क्या हो गया, वो भी लाल बन गया। इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं, हम लोग भी अगर भक्तिमय जीवन में हम डूबे रहेंगे, जैसे एक लोहे को एक आग के अंदर डालो क्या हो जाता है, वो लाल लाल हो जाता है ना। इस तरह हम भी शुद्ध परिशुद्ध हो जाएंगे, इस तरह बताते हैं प्रभुपाद जी। तो भगवान के संपर्क में आकर वो शंख लाल लाल दिखने लगा हुआ ऐसे। इस तरह भगवान के संपर्क में जो भी आते हैं वो भी पवित्र बन जाते हैं। जैसे अगर कोई पुजारी डेटिंग रूम के अंदर जाता है, बाहर आता है, उसके शरीर से सुगंध निकलता है। अरे हम पूछते हैं, अरे चंदन का सुगंध कैसे आ गया आपके शरीर में? क्योंकि भगवान के संपर्क से आ गया। भगवान के पास अत्तर रहता है, चंदन रहता है, सुगंधित पदार्थ रहते हैं भगवान के साथ। तो भगवान को सेवा करते करते भगवान के गुण भी हमारे अंदर उसका क्या बोलते हैं, नो दे ब्रश अवर बॉडी, समझे ना। ब्रश का मतलब है वो उनके संपर्क में हमारे ऊपर भी चिपक जाता है। इसे चिपकना नहीं है, वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं आत्मा से नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई टेल यू इन इंग्लिश सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, सी इफ यू एसोसिएट विथ समबडी, देयर क्वालिटी ऑल्सो ब्रशेस ऑन यू, स्टिक्स टू यू और ब्रशेस ऑन यू। अगर हम भगवान के साथ भगवान के श्री विग्रह का ड्रेसिंग करेंगे, आभूषण पहनाएंगे, उनको देखते रहेंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे, सेवा करेंगे, तो इस तरह हम करते जाएंगे हम भी धीरे धीरे पवित्र होते जाते हैं उससे। हाँ, उन्हीं के दिव्य गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इस तरह साधु महात्माओं की सेवा करके भी एक व्यक्ति उसका चित्त शुद्ध हो जाता है ना, यही कारण है। क्योंकि जिस व्यक्ति का हम संग करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह शंख भी सफ़ेद रंग का था, लेकिन भगवान के होंठों के संपर्क में आकर वो उसमें लालिमा आ गया, ऐसे प्रभु जी बताते हैं। और प्रभु जी बोलते हैं, भगवान के दिव्य हाथों में जब वो शंख बैठ गया, वो लगा मानो एक स्वैन, क्या बोलते हैं, हंस पक्षी जैसे दिखाई दिया। वो हंस पक्षी जिस तरह एक पानी में तैरती है, इस तरह वो दिखाई दिया, बहुत सुंदर है। इस तरह एक उपमा दे रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए हमें, भगवान का शंख को दिव्य शंख बोला गया है, क्योंकि दिव्यौ शंखौ प्रदत्त मधुः, गीता में आता है ना शुरुआत में, भगवान के शंख का नाम क्या है, हाँ पांचजन्य, वो दिव्य है। क्यों दिव्य है, भगवान के हाथ में है। देखिए, ये जो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, हर एक का शंख का नाम बता रहे हैं, पांडवों के हर एक का, अभी भीम का ये शंख है और युधिष्ठिर महाराज का, हर एक का, अर्जुन का, नकुल सहदेव का और भगवान का बता रहे हैं। लेकिन कौरवों के पक्ष में ऐसे नहीं बोला उन्होंने, कौरवों का शंख बोल दिया उन्होंने ऐसे। लेकिन इसको विस्तृत करके बता रहे हैं, क्योंकि उनका आनंद आ रहा है इसको बताने में। और दिव्यौ शंखौ का मतलब है प्लूरल, मल्टीपल, क्यों वो बोल रहे हैं कि भगवान का ही शंख दिव्य नहीं है लेकिन सब पांडवों का। क्यों, क्योंकि पांडव और भगवान के मत में फर्क नहीं है। भगवान की इच्छा को पूर्ति करने वाले पांडव जो हैं, उनके शंख भी दिव्य है। इस तरह हम लोग भी अपने इच्छाओं को भगवान की इच्छा से एक कर देंगे तो हमारे सब कार्य दिव्य बन जाएगा, ये बात हम समझते हैं। क्योंकि हम लोगों का अभी का स्थिति क्या है, कुछ कुछ इच्छाएं भगवान से मिलजुलता है, कुछ कुछ इच्छाएं अलग इच्छाएं हैं, स्वतंत्र इच्छाएं, गलत इच्छाएं। तो इसलिए ये उदाहरण के द्वारा, शंख के उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद ये बात समझ आते हैं अभी तीसरा श्लोक श्लोक ले लीजिए। तम उपशत्य निनादम जगत भय भयावहम प्रत्युद्ययुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसाः। देखिए भर्तृदर्शन लालसाः, भर्तृ का मतलब है एक मुंजनों में स्त्रियां बोलती थी अपने पति के बारे में बर्ता बोलते थे, ये बर्ता हमारे आजकल कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे मिस्टर हैं बोलते हैं ना, तो उसको बर्ता बोलते हैं भर्तृ। वो जो भगवान जो सारे द्वारकावासियों के रक्षक हैं उनके दर्शन के लालसा से सब सारे प्रजा द्वारका के उस आवाज़ को सुनकर ध्वनि को वो शंखनाद को सुनकर वो भाग कर आ रहे थे सब लोग। हाँ रीड द नेक्स्ट वन। या
हरे कृष्ण सारे
रीड द सेम ट्रांसलेशन कैन रीड इट।
भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके।
देखिए भगवान ने जब आवाज किया अपने शंख से सब लोगों के हृदय में सब तरह का डर निकल गया। ऐसे बताते हैं क्यों, ये दिव्य ध्वनि से तुरंत वो समझ गए कि हमारे प्रिय भगवान प्रिय प्रिय पिता हमारे प्रिय भर्ता अभी हमारे निकट आ गए हैं, अभी कुछ भी चिंता नहीं है हमको। देखिए वृंदावन में आप लोग जरा सोचिए, जब एक असुर आता है किसी गोप बालक ने मारा है किसी असुर को, एक भी उदाहरण दीजिए आप, कुछ किसी गोप बालक ने सोचा कि अभी कृष्ण मार नहीं पाएगा मैं ही मारता हूँ उसको, कभी सुना आपने? सब असुरों को कौन मारते हैं, कृष्ण ही मारते हैं। सब गोप बालक क्या करते हैं, जब भी तकलीफ होता है तुरंत कृष्ण की ओर मुड़कर कृष्ण को नाम पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो त्वन्नातम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान कुपितात् भक्तवत्सलः। इस तरह इंद्र कुपित हो गया हमारे से, कृष्ण आप बताओ क्या करना चाहिए, आप ही करो। तो इस तरह आप देखेंगे कृष्ण के उपस्थिति के कारण वो लोग डरते नहीं है। कौन? वृंदावन के गोप बालक। एक बार सब गोप बालक एक बहुत बड़े व्याल सर्प के मुख में जा रहे थे अंदर, दिख रहा था वो सर्प का जिह्वा एकदम एक रोज कलर का रोड, तार रोड तो काला होता है लेकिन रोज कलर का रोड था, बड़ा रोड था वो, और उसका ऊपर का ओंट चू रहा था आसमान को, नीचे का ओंट भूमि में था, वो लग रहा था वो मानो एक पर्वत विशेष जैसे, क्योंकि उसके दांत बड़े बड़े जो थे वो छोटे छोटे पर्वत के समान दिख रहे थे वो। तो वृंदावन के गोप बालकों ने आपस में चर्चा किया, लग रहा है कि ये कुछ तो पर्वत विशेष है, लगता है कि हम वृंदावन में इधर उधर घूम गामा हमने लेकिन इधर आया नहीं हम लोगों ने इस एरिया में, यह क्या है? अच्छा जैसे डिस्नीलैंड में होता है ना बड़े बड़े, ऐसे उन्होंने सोचा कुछ खेलने का स्थान है मनोरम स्थान है ऐसे। लेकिन अंदर जब घुसने ही वाले थे ये गोप बालक ने चेतावनी दी, उन्होंने बोला कि ये लग रहा है कुछ बड़ा सर्प है। तो दूसरा बोला कि अरे सर्प भी हो तो क्या चिंता, बकवत विनक्षति बोलते हैं, अरे पहले बक को मारा ना कृष्ण ऐसे इसको भी मार देगा, कुछ हमें चिंता नहीं। इस तरह बोलते हुए ताले बजाते हुए हंसते हुए कृष्ण की ओर देखते हुए ये सब अंदर चले गए। उसके बाद अंत में कृष्ण भी जाते हैं, तो उनको एकदम पूरा विश्वास था कृष्ण मार देंगे करके। इस तरह प्रभु जी बोलते हैं कि कृष्ण के शंख का आवाज़ अच्छी तरह पहचान पाते थे द्वारकावासी, उसको पहचानते ही उनके अंदर कुछ भी डर हो सकता है वो निकल गया तुरंत ऐसे। तो ये तात्पर्य प्रभा जी बोलते हैं इसी तरह और एक ध्वनि है जिसको सुनकर हम लोगों का शोक मोह भय सब निकल जाएगा। कोई जानते हैं क्या है वो? हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक श्लोक दोहराएंगे हम, बोलिए यस्यां वैश्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापहा। कृष्ण के नाम और कृष्ण के यश ध्यान से अगर हम उस ध्वनि को सुनेंगे क्या होगा, शोक मोह बाया निकल जाएगा। हम भूतकाल का शोक करते हैं, वर्तमान काल का मोह मुख में पड़ते हैं और भविष्य काल का भय उत्पन्न होता है, तीनों निकल जाता है। ऐसे बताते हैं शोक मोह बाया अपाहा बोलते हैं। तो इस तरह इधर वही बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। आगे चौथा श्लोक, तत्रोपनीत बलयो रवेर दीपमिवाद्रिताः। वो लोग कुछ पुरस्कार लेके आए अपने राजा कृष्ण को देने के लिए। ये सब द्वारकावासियों के बारे में जान लेना चाहिए कि ये लोग नित्य निरंतर पार्षद हैं द्वारका में, भगवान के धाम में। लेकिन जब भगवान इधर अवतरित होते हैं वो भी आए हैं उनके साथ। अभी ये सब लोग आकर कुछ भगवान को भेंट देने के लिए आए हैं, और हर एक व्यक्ति क्या भेंट दिया होगा अपने अपने धंधा के अनुसार। जैसे सत्यराज कान को महाप्रभु ने बोला था जगन्नाथपुरी में, आप लोग सिल्क का बिजनेस करते हो, तो भगवान जगन्नाथ के लिए आप सिल्क ये लेके आओ, रस्सी लेके आओ, इस तरह। और ये जो तकिया होता है भगवान को रखने के लिए, इस तरह की सेवा आप लोग करो। तो वो लोगों ने उनके धंधे के अनुसार वो लेके आते थे, हर साल लेके आते थे वो लोग। इस तरह भगवान को कोई दुकानदार मोमबत्ती नहीं तो दिया लेके आता था कुछ देने के लिए। किसी ने अगर कोई कपड़े का दुकान वाला हो तो भगवान के लिए कुछ शाल लेके आया होगा, अगर फूल वाला हो तो एक फूल का हार लेके आया होगा, अगर सोना चांदी का दुकान हो तो भगवान के लिए उसने कुछ अंगूठी नहीं तो कुछ नेकलेस लेके आया होगा। ऐसे अपने अपने यथाशक्ति अपने पास जो भी हो अपने धंधे के अनुसार लोग लेके आए। तत्र उपनीत बलयो, लेकिन ये बताते हैं कि रवेर दीपम इवाद्रता, लेकिन वो बेंट किसके समान है, सूर्य के सामने अगर कोई मोमबत्ती देगा कोई उसका क्या मूल्य है। तो भगवान तो आपका काम है आत्मा राम, उनको कौन क्या गिफ्ट दे सकता है, वो बहुत छोटे ही थे वो गिफ्ट। फिर भी भगवान के बारे में दूसरा लाइन में बता रहे हैं, आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभे न नित्यदा प्रीत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्ष गद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं अवितारं इवार्वकाः। देखिए बता रहे हैं आत्मारामम पूर्ण कामम, भगवान आत्माराम है जिसका मतलब है वो किसी भी चीज़ के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, तृष्णा नहीं होता है उनके हृदय में, यही मुझे प्राप्त करना है। हम लोग देख सकते हैं दुनिया में एक मोबाइल लेते हैं, अगर वो नया मॉडल निकल गया तो सोचते हैं कि नया मॉडल मोबाइल चाहिए हमको, है ना। इस तरह एक कार लेते हैं और बड़ा कार लेना चाहते हैं इस दुनिया में, कुछ ना कुछ हर क्षण देखो कुछ ना कुछ लिस्ट बना सकता है व्यक्ति क्या क्या मुझे चाहिए ऐसे है। लेकिन भगवान आत्मा राम है, वो सब चीज़ों के सृष्टि करता है, उद्गम स्थान है, उनके लिए क्या है, कुछ ज़रूरत नहीं है उनको। और पूर्ण कामम, अगर इच्छा भी हो जाता है भगवान के हृदय में, अगले क्षण उनकी इच्छा शक्ति पूर्ति कर देता है उसको, ऐसा कुछ नहीं कि उनको पूर्ति नहीं कर सकते हैं। निज लाभ नित्य था, अपने ही शक्तियों में वो तृप्त हैं। लेकिन ऐसे भगवान के बारे में बोलते हैं कि प्रीति उत्फुल्ल मुखाहा अप्रोच हो, वो लोग प्रेम से अपने अपने बेंडों को लेके आकर हर्ष गदगदया गिरा, बहुत प्रेम से खुशी से उनके गदगदया, मालूम है ना आपको गदगदया, गदगदया का मतलब है उनके, जब कभी कभी आप एक व्यक्ति को बहुत समय के बाद मिलते हो आपकी बातों में एक तरह का इमोशन आ जाता है, गदगदया गिरा। पितरम, उन्होंने भगवान को माना जिस तरह एक बच्चा अपने पिताजी को मिलता है बहुत समय के पास। कभी कभी पिताजी जर्मनी लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कभी कंपनी के काम से 3 महीने के लिए, तो पिताजी फ़ोन में बात करता है बेटा, हाँ कभी 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 स्काइप में बात करता है। तो 3 महीने के बाद पिताजी वापस आ जाते हैं, विविध पुरस्कार गिफ्ट वगैरह लेके आए हैं बच्चे को पत्नी को सबको। तो जब दरवाज़ा खोलता है अचानक पिताजी दिखाई देते हैं, कैसे बच्चा उनके साथ आलिंगन देगा उनको, जाकर उनके पाँव पकड़ लेगा अपने, तो पिताजी तुरंत उसको उठाएंगे, अपने गोद में ले लेंगे ऐसे, है ना। इस तरह द्वारकावासी भी कृष्ण को जब देखते हैं, वो देख रहे हैं कि पितरम सर्वसुहृदम, हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, अवितारम इवा आरबकाः, जिस तरह बच्चों के लिए ये गार्डियन होते हैं, पिताजी माताजी होते हैं, इस तरह वो लोग बोल रहे थे। पढ़िए अनुवाद।
सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटे लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटे सूर्य को दिए गए दीप दान जैसी थी, फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों।
हाँ, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, ये द्वारकावासी भेंट तो कुछ दे रहे हैं लेकिन कुछ अपेक्षा नहीं है भगवान से उनकी। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। देवताओं के पास अनेक लोग आते हैं अलग अलग अपेक्षाओं को लेकर, हाँ, लेकिन द्वारकावासी प्रेम से दे रहे हैं अपने प्रिय भगवान को, उनका अपने ही पिता मानकर ऐसे। तो ये एक श्लोक है प्रहलाद महाराज की, नैव आत्मन प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुष करुणो वृणीते यद्यजनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। देखिए कितना सुंदर मीनिंग है इसका, बता रहे हैं कि हे भगवान, अगर कोई व्यक्ति आपकी सेवा करेगा वो खुद को ही लाभ प्राप्त होता है उसको। जिस तरह अगर कोई व्यक्ति आईने में अपना चेहरा देखता है तो प्रतिबिंब को अगर सजाना हो तो उस व्यक्ति को ही सजाना चाहिए। अगर इधर एक बिंदी डालो प्रतिबिंब में बिंदी आ जाता है, एक कुंडल डालो कुंडल आ जाता है, एक नथनी डालो नथनी आ जाता है उधर। इस तरह भगवान आप ओरिजिनल हैं, हम लोग आपके एक चिंगारी हैं, आपके प्रतिबिंब हैं, चिंगारी के बराबर हैं। तो अगर हम अपने आप को सजाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आपको सजाना चाहिए। आपको सजाने से हमारी शोभा बढ़ता है, ऐसे प्रहलाद बताते हैं। जिस तरह मैं मार्केट जाता हूँ नहीं तो स्टेशन में जाता हूँ, दो बड़ा लगेज लेकर मेरे दोनों हाथ दुखते हैं और बहुत थक गए हैं, कमज़ोरी लग रहा है मुझे। कभी कभी अगर आपको बहुत कमज़ोर लग रहा है तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ग्लूकोज चाहिए ना। लेकिन ग्लूकोज किधर डालते हैं आप, हाथ में लेकर ऐसे करते हैं ग्लूकोज को, क्या करते हैं आप, हाँ पेट में डालते हैं उसको। उसके बाद शक्ति किधर मिलता है, हाथ को शक्ति मिलता है। इस तरह हाथ को शक्ति प्राप्त करने के लिए पेट को ग्लूकोज देना पड़ता है, समझे ना आपने। इस तरह हम भगवान की सेवा करने से किसको लाभ, हमको ही लाभ है। यह महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए। देखिए घर में पिताजी होते हैं, माता होती है, बेटे बेटी होते हैं। अभी पिताजी ग्रोसरी लेके आते हैं और बेटे बेटे की पैसा देते हैं पढ़ाई के लिए वगैरह सब करते हैं ना, इस तरह उनको पालन पोषण करते। और उनका कर्तव्य क्या है बच्चों का, पिताजी की बात मानना। तो पिताजी से पोषण लेते हैं और पिताजी के इच्छा अनुसार बच्चे अपने जीवन बिताते हैं और उनके आदेश को मानते हैं, करेक्ट है ना। इस तरह हमारे शरीर में भी आप देखेंगे, शरीर से पेट से हमारा सब अवयवों का पोषण मिल रहा है और सब अवयवों को कर्तव्य है कि वो पेट को ये प्रसाद पेट को दे, समझा ना आपने। इसी तरह देश में हम लोग देश से बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम लेटर लिखते हैं कि हमारा एक रोड बना दो इधर, अभी पुणे में हमको एक वाटर टैंक चाहिए, इधर थोड़ा प्लांटेशन करो ताकि पेड़ भी होंगे पुणे में। तो हम उनको विनती करते हैं हमारी ज़रूरतों के लिए, है कि नहीं, और वो ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, उनके लिए टैक्स भरना है सरकार को, करेक्ट है ना। हम इस तरह हम उनसे सुविधा लेते हैं, हमें कर उनको वसूल करके कर उनको फिलअप करना हमारा कर्तव्य है। तीन उदाहरण दिया आपको मैंने, एक शरीर का दिया, एक देश का दिया और तीसरा किसका दिया, हाँ प्रतिबिंब का उदाहरण दिया है ना। इस तरह हम भगवान को सुसज्जित करते हैं तो हम सुंदर दिखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, जब अमेरिका में पहली बार वापस लौटने वाला थे भारत, लेकिन सब शिष्य लोग रोने लगे, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक माता थी जानकी माता जी, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, नहीं प्रभुपाद आप जा नहीं सकते हो। प्रभुपाद बोला मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि भारत में मुझे कुछ डॉक्टर को मिलना है और वृंदावन में और कुछ लाना है आप सब भक्तों के लिए। तो जाने की माता ने प्रभुपाद के टिकट चोरी कर लिया, अपने पास रख दिया। उन्होंने बोला टिकट मेरे पास, आप कैसे जाएंगे। तो सब भक्त हंस पड़े ऐसे। तो जानकी और मुकुंदा, वो दोनों पहले पति पत्नी थे, प्रभुपाद के बहुत प्रिय शिष्य थे उधर, इस तरह। तो मैंने सोचा कि प्रभुपाद जी का वयस कितना था, 70 साल के थे प्रभुपाद जी। आपने कभी देखा है 70 वयस के कोई व्यक्ति है उसको लोग इतना प्रेम करते हैं, 70-80 का कोई हो लोग एक क्षण भी उनसे बिछड़ नहीं पाते हैं। लोग बोलते हैं आप मत जाइए, हमारे साथ रहिए। तो अनेक लोग सोचते हैं कि अगर इसका 70-80 हो गया तो वो लोगों को कभी कभी लोनलीनेस भी महसूस होता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि पिताजी को आप धंधे से थोड़ा हट कर रहो, अब घर में रहो, थोड़ा आराम करो, आप इसी चार खरीदा आपके लिए स्पेशल है, और हम नौकरी करना बिजनेस चलाना किसका है, हमारा काम है ना। वो लोग खुद ही चलाना चाहते हैं, है ना, पिताजी को बाज में रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इस दुनिया में। तो प्रभुपाद जी का वयस कितना था, 70 साल के, लेकिन उस साल में प्रभुपाद जी इतने आकर्षित दिख रहे थे। भक्त लोग देखते थे प्रभुपाद जी के चेहरे में इतना सुंदर मुस्कान है, उनके अंदर एक तरह का आकर्षण है। आकर्षण क्यों आ गया कोई बता सकते हैं? प्रभुपाद जी इतने बूढ़े आदमी के अंदर क्या आकर्षण है? हाँ, ये बोल रहे हैं कि वो कृष्ण को प्रेम करते थे प्रभुपाद जी, इसलिए इतने आकर्षक थे। इससे एक बात पता चलता है, जो व्यक्ति के चित्त शुद्ध है, वो कृष्ण से उसका लगन आ गया है, उसका आकर्षण है, वो व्यक्ति के अंदर एक तरह का खूबसूरती आ जाता है। वो भौतिक खूबसूरती नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो एक तरह का आध्यात्मिक मैग्नेट जैसे बन जाता है, इसलिए वो दूसरों को आकर्षित करता है। तो ये प्रभुपाद ने बोला कि हमारे संस्था में भी भक्त लोगों को निरपराध भावना से नाम जपना चाहिए, निष्कपट भावना से। इस तरह नाम जपने से जब हमारे चित्त में भगवान कृष्ण के लिए आकर्षण आ जाएगा तो लोगों को प्रचार करके लाना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब कृष्ण देवकी के गर्भ में जब कृष्ण आ गए ना, देवकी के शरीर में एक तरह का आभा, आभा मालूम है ना, आभा मीन्स प्रकाश, ये प्रकाश आ गया, इतनी खूबसूरत दिखने लगी। कंस को भी थोड़ा शंका आ गया, इतना कैसे मेरी बहन इतना सुंदर हो गई। वो वसुदेव ने भी देखा, सब देवता आ गए जेलखाने में, देवकी को देखकर समझ गए कि अभी कृष्ण आ गए इसके गर्भ में। तो तुरंत वो लोग विविध तरह के प्रार्थनाएं करने लगे ऐसे। इस तरह हमारी खूबसूरती बढ़ता है जब हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं। जैसे आपको मालूम है ये जो कुब्जा नाम के एक कुबड़ी थी, वो ऐसे कुबड़ी होकर हाथ में एक लाठी लेकर जा रही थी मथुरा में। तो कृष्ण और बलराम और कृष्ण के मित्र सब थे, कृष्ण मजाक उड़ाने लगे, बोलने लगे कि ये तरुणी स्त्री जो इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी लंबी हो, इतनी खूबसूरत हो, किधर जा रही हो? ऐसे भगवान ने मजाक उड़ाया, सब गोपालक हंस पड़े। वो बोली कि मैं कंस के लिए लेके जा रही हूँ कुछ चंदन, हर दिन लेके जाती हूँ। तो कृष्ण ने बोला देखो मुझे और बलराम, हमको आप इसको लगा दोगे चंदन को, तुम धन्य हो जाओगे तुम्हारे जीवन में। तो तुरंत कुब्जा ने देखा कृष्ण बलराम को, उनके मन में तुरंत भक्ति भावना जागृत हो गई, सोचा कि ठीक है। तुरंत चंदन को लेकर भगवान के माथे के ऊपर और कंधे के ऊपर उन्होंने दोनों को, कृष्ण और बलराम को लगा दिया उन्होंने। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, कारण क्या था, अगर कोई कंस का जासूस कोई देख लेते इसको, तुरंत जाकर कंस को न्यूज़ दे दिया तो कंस उनका सर काट देता उनका, ऐसा होने की संभावना था। फिर भी कुब्जा के अंदर कुछ डर नहीं था भगवान की सेवा करने में, बहुत धैर्य के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सेवा की उन्होंने। तो भगवान ने सोचा कि अरे इन्होंने मेरी सेवा किया है, मुझे तो कुछ तो करना चाहिए इनके लिए। भगवान ने भी अपने हृदय में आदान प्रदान करना चाहिए, इसे सोचा भगवान ने। तुरंत अपने पाँव उसके पाँव के ऊपर रख कर दोनों गाल को पकड़कर ऐसे जर्किंग करके उठाया ऐसे भगवान ने उनको। अगले क्षण वो कुब्जा एक अति सुंदरी नारी बन गई, तरुण वयस के, एकदम खूबसूरत बन गए ऐसे। तो उधर प्रभुपाद जी बताते हैं हम सब जीव इस दुनिया में कुब्जा जैसे ही हैं, कुबड़ी। क्यों कुबड़ी हैं हम लोग? क्योंकि हमारे बड़ा पाप का बोझ लेके जा रहे हैं हम लोग हमारे पीछे, तो पाप का बोझ लेकर हम लोग झुक गए हैं कुबड़ी जैसे ऐसे। लेकिन पता नहीं किसी वैष्णव के संपर्क में आकर हम कृष्ण की सेवा में जुड़ गए। कृष्ण की सेवा में जुड़ने के बाद हमारा कुबड़ी चला गया, सब लोग एकदम सुंदर बन गए। हमने भी देखा है विद्यार्थियों में, देखा है विद्यार्थी, कितने कितने विद्यार्थियों को देखा है, उनका बाल लंबे लंबे बाल, बड़ा मूंछ, बड़ा दाढ़ी, और वो लोगों को ऐसे हमने देखा है विद्यार्थियों को सब तरह के गंदे काम करते हुए, लेकिन जब भक्ति में जुड़े एकदम सुंदर बन गए वो। जैसे मैंने पहले बोला, प्रभुपाद ने बोला वैकुंठ से उतरे हैं, बोला ना ऐसे। तो इस तरह कृष्ण की सेवा करने से लाभ किसको है? हमारे लिए लाभ है, ये बात समझना आवश्यक है। अचानक आप मान लो आपका एक पुणे में बाटा का दुकान हो, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, उनका चप्पल टूट जाता है, अचानक आपके दुकान के अंदर आ गए, लाभ किसको? लाभ उनको और आपको। आप उनको बिठाएंगे, अलग अलग शू दिखाएंगे, और वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप अपने नौकर को बोलेंगे, अरे फोटो क्लिक करो, हमें शू देते हुए हैं, उनको फोटो देना। उनको अलग अलग शू देखते हैं, एक चुनते हैं, चाहे शायद वो शू 3000 रुपया भी हो, आप चार्ज करेंगे कि नहीं उनका? कितने लोग नहीं करेंगे, हाथ पकड़ के नहीं करेंगे, है ना? क्यों? पब्लिसिटी हो जाएगा। आप इनका वॉयस कितना है आपका? 74, ये भी जानते हैं प्रभु जी, पब्लिसिटी हो जाएगा दुकान का। करेक्ट है ना? तो आप फोटो निकालेंगे और दुकान के बाहर बड़ा फोटो लगा देंगे, ये दुकान जिधर प्रधानमंत्री आए थे, है ना? तो हम भी लोग बोलते हैं लोगों को, हमारे मंदिर में भारत के प्रेसिडेंट आकर उद्घाटन किया, इसको सुनकर बहुत लोग आ रहे हैं, अरे प्रेसिडेंट आए तो बढ़िया होना चाहिए देखने के लिए, इस तरह आ रहे हैं बहुत लोग। ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का एक आइडिया था, उन्होंने बोला कि या तो प्रधानमंत्री नहीं तो राष्ट्रपति, दोनों में से एक को लाना चाहिए, क्योंकि वो आकर जाएगा तो बहुत लोग आएंगे। मैंने सुना अभी तक 15-20 लाख लोग आ गए हैं हमारे मंदिर में, एक साल में 15 लाख लोग आते हैं। इस तरह अगर आपकी दुकान के बाहर बोर्ड लगाओगे तो अनेक लोग आएंगे आपकी दुकान में, लाभ किसको होता है? आपको होता है। इसी तरह भगवान का भी ऐसा ही है, जिधर भी भगवान अपने पांव डालते हैं ना, बस तुरंत उधर समृद्धि फैल जाता है तुरंत। इसलिए कभी कभी लोग साधुओं के भी बोलते हैं, ये बता रहे थे ना, हमारी दुकान में आते हैं, प्रभु जी ये सीट में बैठ जाइए, ये सुनने, मैं बोलता वो सीट तो आपके लिए है, वो दूसरा सीट हमारे लिए, नहीं नहीं प्रभु जी इधर बैठ जाइए। मैंने पूछा क्यों इधर बैठना है? आप एक बार बैठ कर जाएंगे बिजनेस बढ़ जाएगा हमारा, आप तो भगवान का आदमी है, ऐसे लोग बोलते है ना। तो इस तरह भगवान अगर किसी के घर में आते हैं तो उनको उनके समृद्धि फैल जाता है, क्योंकि लक्ष्मी कटाक्ष उस घर में आ जाता है, ऐसे बताते हैं। इस तरह ये भी भगवान को पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन कुछ मांग नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रेमी भक्त हैं भगवान के। है छोटा बेंट, लेकिन भगवान परवाह नहीं करते हैं कि बेंट छोटा भी हो, खुशी से स्वीकारते हैं भगवान, क्योंकि भक्ति से दिया जा रहा है ना। चाहे सुदामा का पोहे हो, नहीं तो ये विदुरानी केले के छिलके हो, जो भी हो, भगवान बहुत प्रेम से जो दिया जाता है उसको भगवान प्रेम से स्वीकारते हैं, बहुत खुशी से भगवान स्वीकारते हैं। और एक श्लोक पढ़ लेते हैं, छठा। न था स्मते नात सदांग्रि पंकजम विरिंचि वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणं क्षेममिहेच्छतां परम न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः।
नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों में के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल की आप प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिख सकता।
दूसरे लाइन में बोल रहे हैं विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, शिवजी और ब्रह्मा जी भी आपके सामने सर झुकते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं आपको, सब देवता भी। वो बोल रहे हैं कि हे भगवान, आगे बताएंगे त्रैपिष्टपानाम अभी दूरदर्शनम, ऐसे एक श्लोक में आएगा। उसका मतलब क्या है, ब्रह्मा बाकी सब देवताओं को लेकर उधर आते हैं ऊपर, किधर, श्वेत द्वीप में दुग्ध सागर के सामने आकर झुकते हैं, लेकिन आप वो दुग्ध सागर के बीच में एक अनंत शेष में लेट कर योग निद्रा के स्थिति में आप लेटे हो, लक्ष्मी जी आपकी पांव दबा रही है, तो दूर से ब्रह्मा जी आपको देखते हैं और ब्रह्मा जी आपको जो भी बोलते हैं आपको आप सुन लेते हैं और उनको आप उपदेश देते हैं। आपको इतना निकट ब्रह्मा जी देख नहीं पाते हैं, दूर से देखते हैं दुग्ध सागर में, लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली हैं आपको इतना निकट देखते हैं, हम छू पाते हैं, आपको छू भी सकते हैं हम, आप पालिंगन देते हैं, आप इस तरह आपको निकट देखते हैं हम लोग, कितना हम भाग्यशाली हैं ऐसे बताते हैं वो लोग। इस तरह विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, सब देवताओं से आप आपको आपकी पूजा आराधना करते हैं और परायणम क्षेम मिहेच्छताम परम, और आपके शुद्ध भक्त जो होते हैं वो लोग जानते हैं कि आपके दिव्य प्रेम ही ये धर्म का पराकाष्ठा है, इसलिए दूसरा कुछ इच्छा नहीं करते हैं, वो एक ही इच्छा करते हैं कि वो प्रेम को जागृत करें। नयत्र काल प्रभवे पर प्रभु, और आपके ऊपर किसी भी तरह का समय का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि दुनिया में सब जीव मर मिटते हैं लेकिन आपका मृत्यु नहीं है, आप अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे आप हमेशा के लिए, इसलिए आप जैसे व्यक्ति से कोई भी जीव को संबंध जोड़ना चाहिए, इस तरह बताते हैं। भवायनस्त्वं भव विश्व भावन त्वमेव माताथ सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। देखिए बोल रहे हैं भवायनः त्वं भव विश्व भावनः, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यू रीड द ट्रांसलेशन देन आई विल एक्सप्लेन।
हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं, अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें।
देखिए ये बता रहे हैं कि भवाय का मतलब है विश्व के कल्याण के लिए, ना हमारे कल्याण के लिए आपने इतना सुंदर दुनिया बनाया है। और एक गीत है हमारे नवगिंद्र महाराज गाते थे, दुनिया बनाना बना के चलाना ये हमारे हाथ की काम नहीं है, ऐसे कुछ ये इस तरह से। देखिए सब जीवों को रोशनी चाहिए, तो रात को क्या करते हैं हम लोग रोशनी के लिए, एक एक घर में एक एक लाइट लगाते हैं। आप एरोप्लेन में उड़ते समय आपको दिखाई देता है लाखों लाइट है ना, छोटा 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 लाइट लगाते हैं, लेकिन अगले दिन सब जीवों को लाइट देने के लिए भगवान क्या करते हैं, एक बड़ा लाइट भेजते हैं उधर, क्या लाइट, सूर्य है, बस एक लाइट से काम हो जाता है सब जीवों के लिए, है ना। रात को सोते समय नाइट लाइट क्या है, चंद्रमा, वो भी दे देते हैं भगवान, ऐसे कितना आसान काम है भगवान की। देखिए अगर हमको लाइट लगाना तो हर घर में छोटा छोटा लगाना पड़ता है ऐसे, है ना। तो इस तरह से सीजन को बदलना, विविध तरह के तरकारी, फल फूल इत्यादि को प्रदान करना, पीने का पानी देना, इस तरह की व्यवस्था आपने किया है हम जीवन के लिए, वो भवाया इस तरह बोलते हैं। भवाया नस्त्वम भव विश्व भावन है, आप ही सृष्टिकर्ता हो बताते हैं। त्वम एव माता, आप ही हमारे माता भी हो, अतः सुहृत, आप ही सुहृत हो, शुभचिंतक हो, और आप अभी हमारे पति भी हो, पिता भी हो, हैं आप सब कुछ हो हमारे लिए। इसलिए हमें ये बात जानना है कि हमारे माता पिता होते हैं लेकिन उनके माता पिता होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, ऐसे सब बापों के बाप, बापानुबाप वो विठोबा है ना, सब बाप के बाप इस तरह बताते हैं। और तुम सद्गुरु, और आप ही गुरु हो, हाँ, एक श्लोक बोलेंगे, सब लोग दोहराइए, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देखिए इधर बता रहे हैं कि सब जीवों का गुरु एक ही है, कौन? कृष्णा। कृष्णं वंदे जगत गुरुं, वो जगत गुरु है, लेकिन वो गुरु अनेक गुरुओं के मुख से हमारे तक पहुंच जाता है। जैसे हमारे शिक्षा गुरु हैं, कोई वर्तमान प्रदर्शक गुरु हैं, किसी गुरु ने आपको मार्ग दिखाया होगा, मंदिर में जाओ, इधर अच्छा है मंदिर, किसी ने हाथ दिखा दिया, आप मंदिर में आ गए, और कोई शिक्षा गुरु मिला, आपको शिक्षा देता है, उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। कोई दीक्षा गुरु हैं जो दीक्षा देकर आपका पूरा जिम्मेदारी लेता है अपने ऊपर और भगवान तक हमें पहुँचाते हैं। इस तरह अलग अलग गुरुओं के द्वारा कौन बोल रहे हैं? कृष्ण ही बोल रहे हैं, अलग अलग गुरुओं की तरफ प्रेरणा दे रहे हैं। इस तरह हम प्रेरणा को लेकर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते आए हैं हम लोग ऐसे। लेकिन ये कि व्यक्ति हमारे हृदय में जो खड़े हैं उनका नाम है परमात्मा, बोलते हैं ना अंतर्यामी, लेकिन उनको सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग। वो बोल रहे हैं वो, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे मन के ऊपर आवरण है, मल है, काम क्रोध लोभ इत्यादि का। इसका मतलब नहीं है कि वो बोल रहे हैं हम सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए कुछ नहीं करना चाहिए। वो जो भगवान बोल रहे हैं वही चीज़ हमारे सद्गुरु लोग भी बोलते हैं, गुरु लोग जो सिखाते हैं, भगवान जो बोल रहे हैं वही वो भी बोल रहे हैं उसी चीज़ को। हम जब भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अंदर से जो आवाज़ आ रहा है बाहर गुरु से सुन रहे हैं, दोनों एक ही है, ऐसे पता चल जाएगा हमको। हाँ, अंदर भी एक कंपास है हमारे पास, कंपास जानते हैं आप, कंपास। तो अगर हम कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं ना, अंदर से कुछ यह आ जाता है, ये गिल्टी फीलिंग आता है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, गिल्टी फीलिंग? अपराधी भावना है नहीं, नहीं। वो आपको बोलता है कि हे ये गलत है मत करो, ग्लानी है वो, करेक्ट है, आत्मग्लानी बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, तो अंदर से आपको मिलता है एक डायरेक्शन, ये गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो अगर तुम करोगे तो बाद में पछताओगे। हाँ, इस तरह पहले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर ही देता है पाप कर्म, तो बार बार वो बोलता रहता है, बाद में बोलना बंद हो जाता है वो। कारण क्या है? हमने बार बार उसको यह कर दिया, हमने सुना नहीं है उसको, हमने नकार दे दिया उसको। उसके बाद परमात्मा सोचते हैं कि अरे इतने बार मैंने बोला ये सुना नहीं, अभी थोड़ा लात काने दो इसको, लातों का बुत, हाँ मेरी बात को मानेगा नहीं, थोड़ा लात खाकर सीख जाएगा वो, तभी सुधरेगा वो, तभी आगे जाकर नहीं करेगा वो। जिस तरह तो भगवान लात काने देते हैं, इसलिए अनेक लोग दुनिया में पाप कर्म में क्यों लगते हैं वो लोग, क्या उनको सुनाई नहीं देता अंदर से करना नहीं चाहिए? वो लोग लोगों को पहले सुना है लेकिन वो लोग सुने नहीं है। तो आप भक्त बने हैं इसका मतलब क्या, आपने सुना है भगवान का संदेश सुना है, वो आत्मग्लानी जो भी है आपने बोला है, कॉन्शियंस उसको सुनने के कारण हम लोग बच गए। इसलिए हमें सुनते रहना चाहिए, लेकिन अगर सुन नहीं पाते हैं हमारे हृदय से भगवान का आवाज़, तो हमें गुरु का आवाज़ सुनना चाहिए। गुरु वही चीज़ दोहरा रहे हैं, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं त्वम सद्गुरु न, आप ही हमारे सद्गुरु हो, परमं च दैवतम, आप हमारे परम देवता भी आप ही हो। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यस्यानुवृत्या कृतिनो बभूविम, आपका आश्रय लेकर हमारे जीवन में हमने यश प्राप्त किया है, सब तरह के विजय सफलता प्राप्त किया है, ऐसे बताते हैं। ये सत्य बात है, जो भगवान के पद को पकड़कर चले हैं वो लोगों को विजय प्राप्त हुआ अंत में। जैसे पांडव लोग कभी भी अपने धर्म को छोड़ा नहीं उन्होंने, जब द्रौपदी का अवस्थारण होने वाला था उसके बाद जब भीम इत्यादि लोग बहुत उत्तेजित हुए, अर्जुन भीम वगैरह, तो भीम ने बोला युधिष्ठिर को, भैया आप एक शब्द बोलो, मैं अभी दुर्योधन और दुशासन इन लोगों को तोड़ दूंगा, अभी पूरा है। इतने उत्तेजित हो गया था भीम, बस अभी बहुत हो गया, धर्म के नाम में आप सहन करके हम लोगों को भी अधोगति में डाला है आपने, अभी हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे आगे जाकर, क्या क्या चल रहा है, ये हमारे धर्मपत्नी को अपमानित किया है, अभी जंगल भेज रहे हैं हम लोग, या सब लोग अपने ऊपर भस्म को लगाकर अपने चेहरे में वो जंगल की ओर जा रहे थे, क्योंकि नकुल सहदेव ने भस्म लगाया था, क्योंकि हमारे चेहरे को लोग ना देखे ऐसे हैं। तो इस तरह शर्मिंदा किया है हमको, हम क्यों इतना सहन करें हम हैं। तो मेरा तो खून गरम खून इतना मुझे उत्तेजित कर रहा है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो अर्जुन उनको पकड़ देते भीम को, भीम बड़े भाई जो बोलता है उसको मानो, वो जानते हैं सही चीज़ क्या है गलत चीज़ क्या है, इसलिए शांत रहो। तो थोड़ा शांत हो जाते थे वो। कुछ समय के बाद जंगल जाने के बाद कभी कभी द्रौपदी आकर भीम को बोलती थी, हे भीम देखो ये राजा है सारे दुनिया का, अभी लेटा है भूमि में, अभी वो पंछियों का कलरव सुन रहा है, ब्राह्मणों की वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुन रहा है, नदी बह रहा है जंगल में, ये अपने ही आनंद में है, इतने ठंडे पड़ गया है, ये क्या युद्ध करके हमें राज्य प्राप्त होगा क्या? तो भीम बोलता था, मेरा भी वही प्रश्न है तुम्हारे जैसे द्रौपदी। तो द्रौपदी और भीम का अच्छा जोड़ी था है? क्योंकि दोनों की इच्छा थी कि हम युद्ध करके जीत ले कौरवों को, जो जीत कर हम राज सिंहासन को पकड़ ले ऐसे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोलते थे, देखो भीम द्रौपदी अभी हमारा धर्म है जंगल में रहना 12 साल, क्योंकि हमने वचन दिया है, हमें वचनबद्ध होना चाहिए, जो बोलते हैं ना प्राण भी जाए वचन न जाए रखना चाहिए हमें। लेकिन 12 साल के बाद जो कृष्ण की इच्छा, अगर कृष्ण की इच्छा हो राजा होना है तो हम राजा होंगे, अगर कृष्ण बोलते हैं और 12 साल चले जाओ जंगल में, जंगल जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज एकदम शांत थे, धर्मपरायण थे ऐसे। इसलिए विप्र धर्म अच्युत आश्रया ऐसे भीष्म पितामह बोलते हैं, ये वैष्णवों के आश्रय लिया था, धर्म के आश्रय लिया था, भगवान अच्युत कृष्ण के आश्रय लिया था उन्होंने, आश्रय लेकर ये एकदम अंत में वो उनको विजय प्राप्त हो गया, सारे दुनिया के राजा बन गए पांडव लोग। उसके बाद ऐसे बताया जा रहा है कि युधिष्ठिर के जमाने में 3 यज्ञ किया उन्होंने, राजसूय यज्ञ 3 यज्ञ किया, लेकिन इंद्र से भी मशहूर बन गए युधिष्ठिर महाराज। प्रभुपाद जी बोलते हैं कारण क्या है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त थे और कृष्ण उनके महल में आकर रहते थे, और उनको कृष्ण को देखने के लिए ऋषि मुनि उनके महल में आना पड़ा, उनको जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि जंगल छोड़कर महल में आते थे। ऐसे युधिष्ठिर महाराज की महानता बताया जा रहा है। तो इसलिए यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूव का मतलब है, हे भगवान हम आपके पदचिन्हों में चलेंगे, हम यशस्वी बनेंगे, हमें सब समृद्धि प्राप्त होगा, आपकी पथ ही सही पथ है। तो ये संस्था जो है इस्कान संस्था प्रभुपाद ने शुरू की है, इधर हम 4 नियमों को पालन करते हैं, मांस नहीं, नशा नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं, जुआर नहीं, ये 4 चीज़ हम छोड़ते हैं, क्योंकि 4 चीज़ को भागवत में बोला गया है, द्युतम पानम स्त्रिया सोना यात्रा अधर्म शत्रुविदा, ये अधर्म चीज़ है। और हम भगवान के नाम लेते हैं, भगवान के दिव्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, इससे हमारे अंदर सुबुद्धि जागृत होता है। अगर हम ये गंदे कामों को करेंगे तो हमारे बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगा, कुबुद्धि क्या करेगा, हमारे संसार के जटिल संसार के बहुत तकलीफों में हमें डाल देगा। लेकिन सुबुद्धि से हम सतपथ को पकड़कर हम चलते हैं, अग्रसर होते हैं अपने जीवन में भगवान की ओर। ये भगवान का पथ है, महाजनों का पथ है, इस पथ को पकड़कर जो चलेगा ज़रूर उसका जीवन कल्याणकारी होगा, यशस्वी बनेगा, उसको वो सुखी आनंदी बन सकता है ऐसे व्यक्ति, और उसके हृदय में तृप्ति संतुष्टि इत्यादि का अनुभव करेगा ऐसे व्यक्ति कुछ ही सालों में। हमारा अनुभव है कि भक्ति में जुड़ने के बाद ऐसे लगा मानो हमको लाइट लगा दिया किसी ने एक अंधेरे कमरे में, जिधर कमरे में अंधेरा ही अंधेरा रहता उधर एक लाइट लगा तो एकदम। तो मेरे गुरु जी जो थे देवामृत प्रभु उन दिनों में, तो वो जो भी बोलते थे मुझे माननीय था, वो मानने के लिए लायक चीज़ था, वो एक भी गलत नहीं दिखाई दिया उनके बोलचाल में, हर शब्द वो शास्त्र से बोलते थे, शास्त्र इतने पक्के हैं, क्या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और शास्त्र के अंदर भी बहुत करुणा भरा शास्त्र है, क्योंकि जैसे अश्वत्थामा ने जब मारा था ना, तभी कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, देखो जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग अंधे हैं, जो लोग निराध पाणी हैं, जो लोग डर के मारे भाग रहे हैं, जो लोग नीचे झुक कर शरणागत लेकर रो रहे हैं छोड़ दो करके, ऐसे लोगों को मारना नहीं चाहिए। देखिए शास्त्र में कितना पक्का शास्त्र है, हर एक विषय के बारे में ऐसा वर्णन है शास्त्र में। लेकिन अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को मारा था ना, जो सोने हुई अवस्था में ऐसे, इसलिए उसको एक आतताई में गिनाया जाता है, इसलिए उसको मारना योग्य चीज़ है। तो शास्त्र में आप देखेंगे धर्म अधर्म के बारे में इतना सही ढंग से बताया गया है, और प्रभुपाद जी ने शास्त्र को और भी सरल बना दिया हमें अपने तात्पर्यों के द्वारा। तो हम अभी तक कुछ प्रार्थनाएं पढ़ा इस अध्याय में, हम 7वें श्लोक तक पढ़ाए हमने, 8वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। अगले बार आप जब आएंगे तो अगले कक्ष में हो जाएगा पूरा अध्याय। भगवान ऑलरेडी आ गए हैं द्वारका में, अभी उनकी प्रार्थना चल रहा है। तो अगले कक्ष में हम क्या पढ़ेंगे, और एक दो प्रार्थनाएं हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। उसके बाद द्वारका के लोगों ने कैसे अलंकृत किया द्वारका को भगवान को स्वागत करने के लिए, तो इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा हमारे मंदिर में भी सजाने के लिए। अगर फेस्टिवल दिन मनाना हो, इधर सब आइडिया है क्या क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी विस्तृत तरीके से बता रहे हैं। तो अगले क्लास में इसको बोलकर हम इस सेक्शन को हम पूरा कर देंगे अगले कक्ष में। यू कैन अनाउंस द डेट। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, कृष्ण भगवान की, द्वारकावासियों की, श्रील प्रभुपाद की, गौरभक्त वृंदा की।
हरे कृष्णा। तो आज के इस कृष्ण रसायनम सत्र में श्रीमन राधेश्याम प्रभु जी ने हमें समझाया कि किस प्रकार अलग अलग इच्छाएं होती हैं जीवात्माओं की, और उस प्रकार भगवान उन जीवात्माओं के साथ आदान प्रदान करते हैं। उन्होंने बतलाया कि कैसे जो 16,108 महारानियाँ थीं द्वारका की, उनके साथ कृष्ण की कोई भौतिक संबंध नहीं था, बहुत ही शुद्ध संबंध था, और किस प्रकार वे कृष्ण को अपना पति पाए, कड़ी तपस्या की इत्यादि वो प्रभु जी ने हमें बताया। और प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार हमें द्वारका, कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारे भक्ति में जीवन जो सुप्त अवस्था में, उसको कैसे भक्ति को जागृत करना है हमारे हृदय में, तो ये अध्याय हमें सिखलाता है। और आखिरकार में प्रभु जी बता रहे थे किस प्रकार की पांडव जो थे वो धर्म, विप्र और अच्युत, इन तीनों के आश्रय में थे, जिनके कारण उन्हें हमेशा सफलता प्राप्त हुई। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया हमें, सीख बतलाई है।
और एक चीज, बेंट
बेंट
भगवान को,
भगवान बड़े बेंट छोटे
को बेंट देने से लाभ किसको है, देने वाला का है, लेने वाला का है, देने वाला
का लाभ हमें होता है भगवान को बेंट देने से। तो हम आइए हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं, 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।